आगे सबक देखिए भाई। बाबु हद्द शुर्ब व मन शरिब अल खमर फउखिद व रीहुहा मौजूदतुन औ जाऊ बिही सकराना फशहिद शुहूद अलैहि बिदालिक फअलैहिल हद व कदालिक इदा अकर्र व रीहुहा मौजूदतुन लिअन्न जिनायत शुर्ब कद ज़हरत व लम यतक़ादमिल अहद والأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام ومن شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه। भाई गुज़श्ता सबक के अंदर हद ज़िना के अंदर गवाहों के रुजू से मुतअल्लिक मसाइल जिक्र हो रहे थे। साहिब हिदाया ने आपको बतलाया था कि गवाहों की गवाही के साथ जब काजी का फैसला मिल जाए तो वो गवाही मजबूत हो जाती है, और आपको उन्होंने ये भी बतलाया कि कजाए काजी के अंदर ही हद का नाफिज करना भी दाखिल है। तो जब तक हद को नाफिज नहीं किया तब तक गोया कजा अभी पूरी तरह नहीं हुई भाई। तो लिहाजा चार गवाहों ने एक शख्स के खिलाफ जिना पर गवाही दी और फिर उस शख्स को रजम कर दिया गया। तो इस सूरत के अंदर अगर इन गवाहों में से कोई एक रुजू करता है तो सिर्फ इसी रुजू करने वाले को हद लगाई जाएगी और इस पर रुबाए दियत का जमान भी आएगा। और हद इसको इसलिए लगाई जाएगी क्योंकि ये काजिफुल मैयत हुआ भाई, जबकि बाकी जो गवाह हैं उनको हद भी नहीं लगाई जाएगी और उन पर जमान भी नहीं आएगा क्योंकि उनकी गवाही के साथ काजी का फैसला मिल चुका है तो वो गवाही मजबूत हो चुकी है। जबकि इसके मुकाबले में अगर गवाहों में से किसी ने रुजू कर लिया काजी के फैसले से पहले या काजी के फैसले के बाद रुजू किया लेकिन अभी हद नाफिज नहीं की थी, तो जब तक हद नाफिज नहीं की तो यह भी इसी तरह है जैसे उन्होंने काजी के फैसले से पहले रुजू किया हो। तो इस सूरत के अंदर तमाम गवाहों को हद लगाई जाएगी, इसलिए क्योंकि शहादत का निसाब पूरा न रहा भाई। और फिर साहिब हिदाया ने आपको यह मसला भी बतलाया कि गवाही के अंदर जब गवाह रुजू करते हैं तो वहां पर रुजू करने वालों का एतबार नहीं है बल्कि जो बाकी हैं उनका एतबार किया जाएगा। लिहाजा अगर पांच आदमियों ने एक आदमी के खिलाफ जिना की गवाही दी और उस आदमी को रजम कर दिया गया और उसके बाद एक गवाह ने रुजू कर लिया तो अब इस रुजू करने वाले को नहीं देखा जाएगा बल्कि जो गवाह बाकी हैं उनको देखा जाएगा, और वो तो अभी भी शहादत का निसाब पूरा है, पूरा का पूरा हक बाकी है, लिहाजा इस रुजू करने वाले पर कोई सजा नहीं। लेकिन अगर एक और गवाह ने भी रुजू कर लिया तो अब शहादत का निसाब कम हो गया, लिहाजा अब ये जो दोनों रुजू करने वाले हैं इन दोनों को हद लगाई जाएगी और इन दोनों पर रुबाए दियत का जमान आएगा जो इन दोनों पर तकसीम हो जाएगा क्योंकि तीन चौथाई हक अभी भी बाकी है भाई। और फिर साहिब हिदाया ने मसला जिक्र फरमाया कि अगर शुहूद तज़किया ने रुजू कर लिया तो इस सूरत में जो दियत है वो शुहूद तज़किया पर आएगी भाई, जबकि साहिबैन फरमाते हैं कि शुहूद तज़किया अगर रुजू भी कर लें तो उन पर जमान नहीं आएगा क्योंकि शुहूद तज़किया भी शुहूद एहसान की तरह हैं। जिस तरह शुहूद एहसान ने मशहूद अलैह के अंदर एहसान वाली सिफात की गवाही दी थी यानी अच्छी सिफात की गवाही दी थी, इसी तरह शुहूद तज़किया ने भी गवाहों के अंदर अच्छी सिफात की गवाही दी है। तो अच्छी सिफात की गवाही देने की वजह से तो किसी पर जमान वाजिब नहीं किया जा सकता, लेकिन इमाम साहब फरमाते हैं कि शुहूद तज़किया अगर तज़किया न करते तो फिर उन शुहूद जिना की गवाही भी काजी कबूल न करता। तो लिहाजा मालूम हुआ यह शुहूद तज़किया की जो गवाही है यह इल्लतुल इल्लत के दर्जे में है, शुहूद जिना की गवाही वो इल्लत के दर्जे में है और शुहूद तज़किया की गवाही इल्लतुल इल्लत के दर्जे में है। तो लिहाजा शुहूद तज़किया भी जब रुजू करेंगे तो उन पर जमान आएगा भाई। अब सूरत मसला ये कि चार गवाहों ने एक आदमी के खिलाफ गवाही दे दी और उसको जिना में रजम कर दिया गया और फिर बाद में पता चला कि ये गवाह तो गुलाम थे या मजूसी थे, और शुहूदे तस्किया ने अपनी गवाही से रुजो कर लिया। उन्होंने कहा कि हम जानते थे कि ये गुलाम या मजूसी हैं, फिर भी हमने जानबूझकर तस्किया किया था, तो उन शुहूदे तस्किया पर तो जमान आएगा, लेकिन ये जो गवाही देने वाले गुलाम थे या जो मजूसी थे इन पर जमान नहीं आएगा। कहते इसलिए क्योंकि इनका कलाम गवाही नहीं बना, अगर इनका कलाम गवाही होता तो फिर इन पर जमान भी आता, लेकिन इनका कलाम तो गवाही बना ही नहीं। भाई इस पर इश्काल होता है कि आपने हमें पिछले मसले में बतलाया था कि अगर गवाह की गवाही के साथ काजी का फैसला मिल जाए तो वो गवाही मजबूत हो जाती है, और यहां पर भी काजी का फैसला हो चुका है, तो चाहे ये गुलाम हैं चाहे मजूसी हैं इनकी गवाही पक्की हो चुकी है, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि इनका कलाम गवाही ही नहीं है। तो उसका भी मैंने जवाब जिक्र किया था कि ये जो गुलाम और मजूसी हैं इनमें तो शहादत की अहलियत ही नहीं है, इनमें शहादत की अहलियत ही नहीं है, तो मालूम हुआ काजी ने जो फैसला किया था वो कतई और यकीनी तौर पर गलत था। जब काजी का फैसला कतई तौर पर गलत था तो वो कल अदम हो गया, यूं समझो काजी का फैसला हुआ ही नहीं। जब काजी का फैसला हुआ ही नहीं तो इनका कलाम भी शहादत नहीं बना। बात समझ में आ गई। और फिर साहिब हिदायत ने बतलाया था कि ये जो गुलाम या मजूसी गवाह थे इनको हद कजफ भी नहीं लगाई जाएगी, इसलिए क्योंकि इन्होंने जिंदा आदमी पर जिना की तोहमत लगाई थी और वो मर चुका है, और हद कजफ के अंदर तो वरासत जारी नहीं होती, लिहाजा इनको हद कजफ नहीं लगाई जाएगी। इस पर इश्काल हुआ कि उस आदमी के मरने के बाद पता चला है कि इनकी गवाही सही नहीं थी, तो इनको तो काजिफ मैयत करार देना चाहिए, लेकिन आप इनको काजिफुल हय करार देते हैं, इसकी क्या वजह है? तो उसका जवाब मैंने बतलाया था कि वजह यह कि काजिफुल मैयत हम तब करार देते हैं जब गवाह रुजू कर ले, और यहां पर तो ये गुलाम या मजूसी जो हैं इन्होंने रुजू नहीं किया, इनकी तो गवाही गवाही ही नहीं है भाई, गवाही होती तो रुजू भी करते, तो यहां इनका रुजू नहीं, जब इनका रुजू नहीं तो ये काजिफ मैयत भी नहीं हो सकते भाई। इस पर फिर इश्काल हुआ कि ये क्या वजह है, गवाह रुजू करे तो आप उसको काजिफ मैयत करार देते हैं, और गवाह के गुलाम या मजूसी होने का पता चले तो फिर आप उसे काजिफ मैयत करार नहीं देते, ये फर्क आप क्यों करते हैं? तो मैंने बतलाया था कि वजह यह है कि जब गवाह रुजू करता है तो वो जो माजी के अंदर इसने गवाही दी थी इस मसले में वही गवाही पलट कर कसफ बन जाती है, और गुलाम और मजूसी जो है इसका तो वो कलाम शहादत ही नहीं बना था तो वो पलट कर कजफ भी नहीं बनेगा, लिहाजा इसको हम काजिफ मैयत भी करार नहीं दे सकते। ज्यादा से ज्यादा यही कह सकते हैं कि जब वो शख्स जिंदा था उस वक्त इन्होंने जिना की तोहमत लगाई थी, और अब तो वो मर चुका है तो अब हद कजफ जारी नहीं की जा सकती, क्योंकि हद कजफ के अंदर वरासत जारी नहीं होती। भाई बात समझ में आ गई। और फिर उसके बाद आपने मसला पढ़ा था कि जब काजी किसी के कत्ल का फैसला कर दे या रजम का फैसला कर दे तो वो शख्स मुबाहुद दम बन जाता है, यानी उसका खून हलाल हो जाता है, इससे पहले वो महफूजु दम था यानी उसका खून महफूज था, अगर कोई उसको कत्ल करता तो उस पर किसास या दियत आती, लेकिन यहां पर जब काजी ने एक आदमी के कत्ल का या रजम का फैसला कर दिया तो यह महफूजु दम न रहा, यह मुबाहुद दम बन गया, इसका खून हलाल हो गया। उसके बाद एक आदमी ने इस शख्स को कत्ल कर दिया तलवार के जरिए, और फिर पता चला कि वो जो गवाह थे वो तो गुलाम थे, उनमें तो शहादत की अहलियत ही नहीं थी, तो फिर इस सूरत में किसास तो ये तकाजा करता है कि इस आदमी ने उसको बेगुनाह कत्ल किया है, लिहाजा इसको भी किसास में कत्ल किया जाए, लेकिन इस्तेहसानन इस आदमी को किसास में कत्ल नहीं किया जाएगा, अलबत्ता इस पर दियत वाजिब हो जाएगी। इस्तेहसान की वजह यह है कि जिस वक्त इस आदमी ने उसको कत्ल किया उस वक्त जाहिरी एतबार से काजी का फैसला सही था भाई, और यह मुबाहुद दम हो चुका था, तो उसने काजी के फैसले पर एतमाद करते हुए कत्ल किया कि यह तो मुबाहुद दम हो चुका है, तो लिहाजा इसकी वजह से शुबा आ गया और शुबे की वजह से किसास साकित हो जाता है। लिहाजा किसास तो साकित हो गया लेकिन इसको अब पूरी दियत अदा करना पड़ेगी भाई। और यह भी बतलाया था कि यह दियत अब पूरे कबीले वालों पर नहीं आएगी, इसी आदमी के माल में से अदा की जाएगी, क्योंकि कबीले वाले दियत के अदा करने में तब शरीक होते हैं जब कत्ल के अंदर गलती हुई हो। किसी ने गलती से कत्ल किया हो तो सारा कबीला फिर उसकी मदद करता है, लेकिन अगर कोई जानबूझकर जुर्म करता है और किसी को कत्ल करता है तो वहां पर कबीला दियत की अदायगी में उसके साथ शरीक नहीं होता। और नीज ये जो माल आया है तो इस शख्स पर पूरी दियत अदा करना पड़ेगी इसको, ये नफ्स कत्ल की वजह से आया है और जो नफ्स कत्ल की वजह से जो माल वाजिब होता है उसको 3 साल की मुद्दत में अदा करना होता है, यानी हर साल दियत का 1/3 हिस्सा ये शख्स अदा करेगा और 3 साल के अंदर मुकम्मल अदायगी करेगा भाई। और अगर काजी के रजम के फैसले के बाद इस आदमी ने उस शख्स को जिसके काजी ने रजम करने का हुक्म दिया है, वो जो मुजरिम है, इस शख्स ने उस मुजरिम को रजम कर दिया और फिर बाद में पता चला कि वो जो गवाह थे वो तो गुलाम थे, तो फिर इस सूरत में दियत बैतुल माल पर आएगी, इस रजम करने वाले आदमी पर नहीं, क्योंकि इसने तो काजी के हुक्म की तामील की है, काजी ने भी रजम का हुक्म दिया था और इसने भी रजम किया है, जबकि पिछले मसले में तो इसने काजी के हुक्म की तामील नहीं की थी, काजी ने रजम का हुक्म दिया था, तलवार से कत्ल करने का हुक्म नहीं दिया था, तो तलवार से कत्ल करने की सूरत में इस कातिल पर दियत आएगी और अगर रजम करता है तो फिर दियत बैतुल माल पर आएगी भाई। बात समझ में आ गई। और फिर साहिब हिदाय ने यह मसला भी जिक्र फरमाया कि अगर 4 गवाहों ने एक आदमी के खिलाफ जिना की गवाही दी और उसने मोहसन होने का इनकार किया और हाल यह है कि उसकी बीवी है और उससे इसका एक बच्चा भी हो चुका है, जब बच्चे का नसब इससे साबित है तो मालूम हुआ यह सोहबत कर चुका है, लिहाजा इसका मोहसन होना साबित हो गया, लिहाजा इसको रजम किया जाएगा। या इसी तरह अगर इसके मोहसन होने पर एक मर्द और 2 औरतों ने गवाही दे दी, इस सूरत में भी इसको रजम किया जाएगा। जबकि इमाम जुफर और इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि नहीं, एक मर्द और 2 औरतों की गवाही से इसका मोहसन होना साबित नहीं हो सकता। इमाम शाफी रहमतुल्लाह का तो ज़ाबता है कि माली मामलात के अलावा और मामलात में औरतों की गवाही कबूल ही नहीं की जाएगी, तो यह भी गैर माली मामला है, लिहाजा यहां भी औरत की गवाही कबूल नहीं की जाएगी। जबकि इमाम जुफर रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि ये एहसान की गवाही दे रहे हैं लेकिन यहां पर मोहसन होना जो है वो भी इल्लत के दर्जे में है। मोहसन होना वैसे तो शर्त है रजम के लिए, लेकिन ये ऐसी शर्त है जो इल्लत के दर्जे में है, क्योंकि इसकी वजह से उस शख्स की सजा बढ़ रही है, तो मोहसन होना भी इल्लत के दर्जे में है, यानी जिना के दर्जे में है। और जैसे जिना पर सिर्फ मर्दों की गवाही कबूल की जाती थी, तो मोहसन होने पर भी सिर्फ मर्दों की गवाही कबूल की जाएगी भाई। हम जवाब देते हैं कि नहीं, मोहसन होना यह तो खिसाल हमीदा से इबारत है, मोहसन होना अच्छी सिफात का नाम है, और नीज ये सारी सिफात ऐसी हैं जो जिना से रोकने वाली हैं, तो लिहाजा मोहसन होना इल्लत यानी जिना के दर्जे में भी नहीं है, तो इस पर गवाही वो जिना पर गवाही के दर्जे में न हुई, लिहाजा इसमें औरतों की गवाही कबूल की जाएगी। जैसे इसके अलावा किसी और मकाम पर अगर मोहसन होने के लिए गवाही की जरूरत पड़ी तो जैसे वहां पर औरतों की गवाही कबूल की जाती है, तो यहां पर भी मोहसन होने के लिए औरतों की गवाही कबूल की जाएगी भाई। और फिर आखिर में साहिब हिदाया ने बतलाया था कि अगर शुहूद एहसान रुजू कर लें तो फिर इस सूरत के अंदर उन पर जमान नहीं आएगा भाई। मैंने बतलाया था हमारे नजदीक अगर शुहूद एहसान रुजू कर लें तो उन पर जमान नहीं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ अच्छी सिफात की गवाही दी है। हां अलबत्ता शुहूद जिना या शुहूद तज़किया रुजू कर लें तो फिर उन पर जमान आएगा भाई। अब आइए आज के सबक पर। बाबु हद्द शुरबी वमन शरीब अल खमर फउखिद वरीहुहा मौजूदतुन औ जाऊ बिही सकरान फशहिद शुहूद अलैहि बिज़ालिक फअलैहि अल हद वकज़ालिक इदा अक़र्र वरीहुहा मौजूदतुन। आज हम पढ़ेंगे बाबु हद्द शुर्ब। शुर्ब का माना है पीना, लेकिन यहां पर मुराद नशा आवर मशरूब को पीना है, जैसे शराब है या शराब के अलावा कोई और नशा आवर मशरूब जिसकी वजह से नशा हो जाए। भाई किताबुल हुदूद के आगाज में मैंने बतलाया था कि कुल हुदूद छह हैं भाई, एक हद जिना है, एक हद कजफ है, एक हद शुरब खमर है, एक हद सुकर मिन गैर खमर है, और इसी तरह एक हद सरिका है और एक हद कतई तरीक है, यानी डाके की हद जो है। तो कुल हुदूद छह हैं, उनमें से जो दो हुदूद हैं उनका बयान यहां पर होगा, हद शुरब खमर और हद सुकर मिन गैर खमर, यानी शराब पीने की वजह से जो हद आए, या इसी तरह कोई और नशा आवर मशरूब पिया और उसकी वजह से हद आई, तो दोनों यहां बयान होंगे। इसीलिए साहिब हिदाया ने बाब का उन्वान दिया बाबु हद शुरबी, ये बाब है नशा आवर मशरूब के पीने की हद के बयान में। शुर्ब का वैसे माना तो है पीना, लेकिन यहां नशा आवर मशरूब को पीना मुराद है, चाहे वो शराब हो और चाहे शराब के अलावा कोई और चीज हो। भाई तो कहते हैं बाब हद शुरबी, ये बाब है नशावर मशरूब के पीने की हद के बयान में। वमन शरीब अल खमर फउखिदा व रीहुहा मौजूदतुन औ जाऊ बिही सकराना। भाई याद रखो, अगर कोई शख्स शराब पी लेता है तो उस पर हद वाजिब होगी, उसके अंदर नशा होने की भी शर्त नहीं है, लेकिन अगर कोई और नशा आवर मशरूब पीता है तो वहां नशे की शर्त है। नशा होगा तो फिर इस सूरत में हद आएगी, और अगर नशा नहीं तो फिर हद भी नहीं। तो शराब के पीने में नशे को नहीं देखा जाएगा, कोई शख्स शराब का एक कतरा भी पी लेगा तो हद शुरबे खमर उस पर वाजिब हो जाएगी, लेकिन और कोई मशरूब पीता है तो वहां नशा होना शर्त है। भाई तो कहते हैं वमन शरीब अल खमरा फउखिदा व रीहुहा मौजूदतुन, वमन शरीब अल खमरा, और जिसने शराब पी, फउखिजा तो उसको पकड़ा गया, व रीहुहा मौजूदतुन, इस हाल में कि शराब की बू मौजूद थी। रीहुहा, ये हा जमीर जो मुअन्नस की है ये राजे है खमर को, खमर जो है अरबी में मुअन्नस सिमाई है, तो इसकी तरफ वाहिद मुअन्नस की जमीर राजे की। तो कहते हैं वमन शरीब अल खमरा, कि जिस शख्स ने शराब पी, फउखिजा तो उसको पकड़ा गया, व रीहुहा मौजूदतुन, इस हाल में कि शराब की बू मौजूद थी, उसके मुंह से शराब की बू आ रही थी, और जाऊ भी ही सकराना, या उसको लेकर आए लोग, सकराना इस हाल में कि वो मदहोश था, वो नशे में था, फशहिद शुहूद अलैहि बिज़ालिका। भाई देखो, याद रखो, गहरी बात है यहां, वो समझ लो, किसी के मुंह से शराब की बू आए तो इसकी वजह से उस पर हद वाजिब नहीं होगी, या कोई नशे के अंदर है तो इसकी वजह से हद वाजिब नहीं होगी, बल्कि शराब के पीने पर या नशा अवर मशरूब के पीने पर गवाही भी होनी चाहिए, किसी ने इसको शराब पीते हुए देखा है या नशा अवर मशरूब पीते हुए देखा है, या ये खुद इकरार कर लेता है कि मैंने शराब पी है या मैंने फुला नशा अवर मशरूब पिया है, तो सिर्फ बू की वजह से भी हद नहीं, और सिर्फ नशे की वजह से भी हद नहीं, बल्कि उसके साथ क्या जरूरी है, गवाही जरूरी है या इकरार जरूरी है। भाई तवज्जो है, अब देखो ये मतन के अंदर ये सब बयान करेंगे। कहते हैं जिसने शराब पी और उसको पकड़ा गया और उसकी बू मौजूद थी, और जाऊ भी ही सकराना, या उसको लेकर आए इस हाल में कि वो मदहोश था जी। अब फौरन हद का हुक्म नहीं लगाना, बल्कि क्या चाहिए, गवाह चाहिए या इकरार, वो भी अब बयान कर रहे हैं। और जाऊ भी ही सकराना, या उसको लेकर आए इस हाल में कि वो मदहोश था, फशहीद शुहूद अलैहि बिज़ालिका, तो फिर गवाहों ने भी उस पर गवाही दे दी, फअलैहि हद, तो इस पर हद है। वकज़ालिका इदा अकर्रा, और इसी तरह जब इसने इकरार किया, वरीहुहा मौजूदतुन, और उस शराब की वो मौजूद थी, तो फिर इसको हद लगाई जाएगी। और अगर नशे में था, अगर नशे में था और उसमें वो इकरार कर रहा है कि हां मैंने नशावर मशरूब पिया है, फिर ये इकरार मुआतबर नहीं। भाई फिर ये इकरार मोतबर नहीं है। वजह यह कि नशे के अंदर तो ज्यादा एहतमाल है झूठ बोलने का, इसको होश ही नहीं है पूरी तरह, तो लिहाजा नशे के अंदर अगर वो नशावर मशरूब के पीने का इकरार करता है तो फिर इस सूरत में हद नहीं आएगी। हां अलबत्ता अगर इसके मुंह से शराब की बू आ रही है, नशे में नहीं है, शराब की बू आ रही है और ये शराब पीने का इकरार करता है, फिर इस पर हद आएगी। चुनाचे इसीलिए देखो वह कजाली का ईदा अकर्रा व रीहुहा मौजूदतुन, और इसी तरह है हुक्म यानी हद वाजिब होगी जब वो इकरार कर ले और शराब की बू मौजूद हो, उसके मुंह से शराब की बू आ रही हो। नशे को नहीं जिक्र किया, वो इकरार करे और नशा मौजूद हो, नहीं, क्योंकि आगे चलकर आपको खुद साहिब हिदाया भी बतलाएंगे कि नशे की हालत में अगर कोई शख्स ऐसी हद का इकरार करे जो खालिस अल्लाह का हक है, जो खालिस अल्लाह का हक है, तो वो साबित नहीं होगी भाई। तो कहते हैं वकदाली का इदा अकर्रा वरीहुहा मौजूदतुन, और इसी तरह है जब उस शख्स ने करार कर लिया, वरीहुहा मौजूदतुन इस हाल में कि शराब की बू मौजूद थी, लिअन्ना जिनायत शुर्बी कद जहरत। अब वजह जिक्र कर रहे हैं कि हद क्यों वाजिब होगी, कहते हैं लिअन्ना जिनायत शुर्बी कद जहरत, इसलिए क्योंकि नशावर मशरूब पीने का जुर्म जो है कद जहरत वो जाहिर हो गया है, वलम यतकादमिल अहदु, और जमाना भी पुराना नहीं हुआ, जमाना भी ज्यादा नहीं गुजरा कि उसके मुंह से शराब की बू आ रही है या वो मदहोश है नशे में है, तो देखो जमाना भी ज्यादा नहीं गुजरा। तो कहते हैं लिअन्ना जिनायत शुर्ब कद जहरत, इसलिए क्योंकि शुर्ब का जुर्म जो है वो तहकीक जाहिर हो गया है, वलम यतकादमिल अहदु, और जमाना भी पुराना नहीं हुआ, वल असलु फीहि कौलुहु अलैहि सलातु वस्सलाम, और इसके अंदर असल जो है हुजूर अलैहि सलाम का कौल है, यानी वजूब हद के सिलसिले में असल क्या है, हुजूर अलैहि सलाम का कौल है, उससे पता चलता है कि हद वाजिब होगी भाई। तो कहते हैं वल असलु फीही कौलुहु अलैहि सलातु वस्सलाम, और हद के वाजिब होने में असल जो है वो हुजूर अलैहि सलाम का कौल है कि आपने फरमाया वमन शरिबल खमर फजलिदूह फइन आद फजलिदूह, वमन शरिबल खमरा, और जो शख्स शराब पी ले, फजली दूह, तो उसको कोड़े लगाओ, फइन आद फजली दूह, अगर वो फिर लौटे तो फिर कोड़े लगाओ, यानी अगर दोबारा शराब पिए तो दोबारा कोड़े लगाओ। और इसी तरह याद रखो बाज रिवायात में आता है अगर वो चौथी मर्तबा फिर इसी तरह करे तो उसे कत्ल कर दो, चौथी मर्तबा इसी तरह करे यानी शराब पिए तो उसे कत्ल कर दो, लेकिन फुकहा फरमाते हैं कि नहीं, कत्ल नहीं किया जाएगा, जितनी मर्तबा भी कोई शख्स शराब पिए हर मर्तबा हद ही लगाई जाएगी। तो इस पर इश्काल होता है कि हदीस के अंदर तो हुजूर अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि चौथी मर्तबा शराब पी ले तो उसको कत्ल कर दो, तो उसका जवाब देते हैं फुकहा कि इससे मुराद यह है कि अगर वो शख्स इस शराब को हलाल समझता हो, उसे बार बार मना किया जा रहा है लेकिन वो इसके हराम होने को तस्लीम ही नहीं कर रहा, तो उसके लिए यह हुक्म है कि उसको कत्ल कर दो, क्योंकि शराब की हुर्मत तो कुरान से साबित है भाई। तो लिहाजा जब वो शराब की हुर्मत का इनकार कर रहा है तो वो मुर्तद हो गया, वो काफिर हो गया, और मुर्तद जो होता है वो वाजिबुल कत्ल होता है। आगे देखिए कहते हैं वह इन अकर्र बादा जहा बी राइहतिहा लम युहद इंदा अबी हनीफत व अबी यूसुफ रहिमहुमल्लाह। भाई याद रखो शेखैन रहिमहुमल्लाह फरमाते हैं कि अगर उस शराब की बू मुंह से खत्म हो गई या नशा खत्म हो गया तो फिर उसके बाद हद नहीं लगाई जाएगी, क्योंकि बात पुरानी हो गई। अगर उस शख्स के मुंह से शराब की बू खत्म हो गई या उसका नशा खत्म हो गया तो फिर हद नहीं लगाएंगे, क्योंकि बात पुरानी हो गई, क्योंकि हुदूद का मसला बड़ा नाजुक है, लिहाजा पूरी कोशिश की जाएगी कि किसी तरह हुदूद को टाल दिया जाए भाई। क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इदर उल हुदूद अबी शुबहात, कि तुम शुबों की वजह से हुदूद को टाल दिया करो। तो कहते हैं वह इन अकर्र बादा जहाबी राइहतिहा, और अगर इस शख्स ने इकरार किया बाद इसके कि जब शराब की बू जा चुकी थी, लम युहद्दा, तो इसको हद नहीं लगाई जाएगी, इंदा अबी हनीफत व अबी यूसुफ रहिमहुमल्लाह, शेखैन रहिमहुमल्लाह के नजदीक, वकाल मुहम्मद रहिमहुल्लाह तआला युहद्दु, और इमाम मोहम्मद रहमल्ला फरमाते हैं हद लगाई जाएगी। चाहे नशा खत्म हो गया, चाहे शराब की बू खत्म हो गई, फिर भी हद लगाई जाएगी। आगे साहिबे हिदाया भी आपको बतलाएंगे। इमाम मोहम्मद रहमल्ला इस हद शुर्ब को कियास करते हैं हद जिना पर, और हद जिना के अंदर बात पुरानी तब होगी जब एक महीना गुजर जाए, तो यहां पर भी वो एक महीने का एतबार करते हैं। वो फरमाते हैं कि बू के खत्म होने से या नशे के खत्म होने से बात पुरानी नहीं हुई, लिहाजा हद लगाई जाएगी। तो कहते हैं वकाल मोहम्मद रहिमहुल्लाह ताला युहद्दु, और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि हद लगाई जाएगी। वकदालिका इदा शहीदु अलैहि बादमा ज़हब रीहुहा, भाई पहले तो बतलाया अगर ये इकरार करे और बू खत्म हो चुकी है तो फिर हद नहीं आएगी। और अब बतला रहे हैं अगर गवाह गवाही देने आए और इस शराब की बू इसके मुंह से खत्म हो चुकी है, तो इस सूरत में भी शेखैन रहमहुमल्ला फरमाते हैं कि बात पुरानी हो गई, लिहाजा हद जारी नहीं की जाएगी। तो कहते हैं वकदालिक इदा शहीदु अलैहि, और इसी तरह है जब गवाह उसके खिलाफ गवाही दें। बाद मा ज़हब रीहुहा, बाद इसके के जब शराब की बू जा चुकी थी तो उस हद नहीं लगाई जाएगी। इंद अबी हनीफत व अबी यूसुफ रहिमहुमल्ला, शेखैन रहिमहुमल्ला के नजदीक। वकाल मोहम्मद रहिमहुल्लाहु युहद्दु, और इमाम मोहम्मद रहमल्ला फरमाते हैं कि हद लगाई जाएगी, चाहे बू खत्म होने के बाद भी गवाह गवाही दें तो हद लगाई जाएगी। फतकादुमु यमनाउ कुबूल शहादति बिल इत्तेफाक, यहां से साहिब हिदाया आपको बतला रहे हैं कि जमाना ज्यादा गुजर जाए, बात पुरानी हो जाए, तो इस सूरत में हद शुर्ब भी साकित हो जाएगी बिल इत्तेफाक। शेखैन रहमहुमल्ला और इमाम मोहम्मद रहमहुमल्ला का इस बात पर इत्तेफाक है कि बात जब पुरानी हो जाएगी तो हद शुर्ब साकित हो जाएगी, चाहे हद शुर्ब खमर हो, चाहे हद सुकर मिन गैरिल खमर हो, दोनों हुदूद जो हैं वो बात पुरानी हो जाए तो साकित हो जाएंगी। लेकिन किसको पुराना कहेंगे और किसको पुराना नहीं कहेंगे, इसमें इख्तिलाफ है। शेखैन रहमहुमल्ला फरमाते हैं अगर नशा खत्म हुआ या शराब की बू खत्म हो गई तो बात पुरानी हो गई, जबकि इमाम मोहम्मद रहमहुमल्ला फरमाते हैं नहीं, जब एक महीना गुजरेगा फिर बात पुरानी होगी। तो कहते हैं फतकादुमु यमनाउ कुबूल शहादत बिल इत्तेफाकी, तो जमाने का पुराना होना यह कबूल शहादत को मना करता है बिल इत्तेफाक। गैर अन्नहु मुकद्दरुम बिज़मान इंदहु, मगर यह कि इसका अंदाजा लगाया गया है जमाने के साथ। इंदहु इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के नजदीक। एतबार हम भी हद जिना, हद जिना पर कियास करते हुए। वहाजा, और ये इस वजह से कि जमाने के साथ अंदाजा क्यों लगाया जाएगा, कहते हैं वहादा, और ये इसलिए लिअन्न ताखीर यतहक्ककु बिमुज़ी ये ज़मानी, ये क्योंकि ताखीर जो है वो साबित हो जाएगी जमाने के गुजरने से, जमाने के गुजरने से ताखीर साबित हो जाएगी। वर राइहतु कद तकूनु मिन गैरिही, और बू तो कभी कभार किसी और चीज से भी हो सकती है, शराब जैसी बू तो किसी और चीज की भी हो सकती है, लिहाजा बू का एतबार नहीं किया जाएगा बल्कि जमाने का एतबार किया जाएगा। तो कहते हैं वर्रा इहतु कद तकूनु मिन गैरिही, और बू जो है वो तो शराब के अलावा किसी और चीज से भी हो सकती है। कमा कीला, जैसे कि कहा गया है। आगे शायर का शेर पेश कर रहे हैं, शायर कहता है यकूलून ली इन कह शरिबता मुदामतन फकुलतु लहुम ला बल अकलतु सफर जला। यकूलून ली इन कह, याद रखो नकीहा यन कहू, और इसी तरह नकहा यन कहू, बाबे फतहा भी है और बाबे समीहा भी है। नकीहा यन कहू और नकहा यन कहू का माना है किसी के मुंह या नाक के करीब सांस लेना, किसी के मुंह या नाक के करीब सांस लेना ताकि उसको मुंह की बू का पता चले। देखो अरबी में एक ही लफ्ज है इसके लिए नकीहा, उसने फुलां के मुंह के करीब सांस लिया। उर्दू में इसका कोई मुतरादिफ नहीं है, देखो मुझे कितना लंबा तर्जमा करना पड़ रहा है, किसी के मुंह के करीब सांस लेना, और अरबी में कहेंगे नकीहा। अभी भी शायद बास को बात समझ में ना आई हो, ये इसी तरह है जैसे देखो जैसे मसमजा और इस्तिनशाक। मजमजा इसका मुतरादिफ उर्दू में मौजूद है, मजमजा का माना है कुल्ली करना, कुल्ली करना। अब आपको यह नहीं कहना पड़ेगा मुंह में पानी लेना और फिर मुंह के अंदर उसको घुमाना और फिर उसको गिरा देना, देखो कितना लंबा तर्जमा है, लेकिन आपको उर्दू में मुख्तसर कहना पड़ता है कि उसने कुल्ली कर ली। लेकिन इस्तिनशाक जो है इसका उर्दू में कोई मुतरादिफ नहीं। उर्दू में इस्तिनशाक का हम क्या माना करते हैं? नाक में पानी डालना। देखो पूरा लंबा तर्जमा कर रहे हैं, जबकि वहां हमने तर्जमा किया था कुल्ली करना, मुंह में पानी डालना नहीं, ये तर्जमा हमने नहीं किया। तो यहां भी इसी तरह है, नकीहा यनकहू का माना है किसी के मुंह के करीब सांस लेना ताकि उसको मुंह की बू का पता चल जाए। और शरीबता मुदामतन, मुदामह याद रखो शराब को कहते हैं, मुदामह किसे कहते हैं? शराब को भाई। और सफरजल का लफ्ज आगे आ रहा है, सफरजल याद रखो इसको उर्दू में बही कहते हैं, बही भी कहते हैं और बही दाना भी। याद रखो ये भी सेब और नाशपाती की तरह का एक फल है, अलबत्ता नाशपाती के ज्यादा करीब है, तो ये एक फल है भाई। तो शायर कहता है यकूलून अली, कि वो मुझसे कह रहे हैं इनका, यानी अपना मुंह सूंघवाओ, मुंह के करीब सांस लो ताकि हमें तुम्हारे मुंह की बू का पता चले। शरीबता मुदामतन, तूने शराब पी है, लोग मुझसे कह रहे हैं मुंह सूंघवाओ भाई, शरीबता मुदामतन तूने शराब पी है। फकुलतु लहुम, तो मैंने उनसे कहा ला नहीं, बल अकल तो सफर जला, बल्कि मैंने बही खाई है, मैंने बही फल खाया है, ये उसकी बू है, शराब की बू नहीं है। तो कहते हैं यकूलून अली, वो लोग मुझसे कह रहे हैं इन कह के मुंह के करीब सांस लो, यानी ताकि हमें बू का पता लग जाए। शरीबता मुदामतन, तूने शराब पी है। फकुल तुल्लहुम ला, तो मैंने उनसे कहा नहीं, बल अकल तो सफर जला, बल्कि मैंने तो वही फल खाया है। तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह की दलील चल रही है, वो फरमाते हैं बू का एतबार नहीं है, बू कभी शराब के अलावा किसी और चीज की भी हो सकती है। जैसे इस शेर के अंदर शायर बयान कर रहा है कि मेरे मुंह से जो बू आ रही है वो शराब की नहीं है बल्कि सफर जल की है, अगरचे इसकी बू भी शराब जैसी है, लेकिन यह बहरहाल मैंने शराब नहीं पी। आगे देखिए वाइंदहु मा युकद्दरु बिज़वालिर राइहती, और शेखैन रहिमहुमल्लाह के नजदीक इस जमाने के पुराना होने का अंदाजा लगाया जाएगा बिज़वालिर राइहती, बू के खत्म होने के साथ। लिकौल इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु फीही, इस वजह से कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है इस बारे में, वो फरमाते हैं फइन वजद तुम राइहतल खम्र फजली दूह। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं फइन वजद तुम राइहतल खम्र, अगर तुम शराब की बू पाओ, यानी किसी ने शराब पी है और तुम उसके मुंह से शराब की बू पाओ, फजली दू हो, तो फिर इसको कूड़े लगाओ। मालूम हुआ शराब की बू आ रही हो मुंह से, फिर ही हद लगाई जाएगी, वरना बात पुरानी हो चुकी है। बात समझ में आ गई? तो कहते हैं हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं फइन वजद तुम राइहतल खम्री, के अगर तुम शराब की बू पाओ फजली दू हो, तो इसको कोड़े लगाओ। वली अन्न क़ियाम अल असर मिन अक़वा दलालतिन अला शुर्बी, अब यहां से अकली दलील भी जिक्र कर रहे हैं साहिब हिदाया, साहिब हिदाया अकली दलील भी जिक्र कर रहे हैं शेखैन रहमहुमल्लाह के मजहब की ताइद में। एक तो नकली दलील जिक्र कर दी हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु का कौल भाई, और अकली दलील भी कहते हैं अकल भी इसकी ताइद करती है कि बू का एतबार होना चाहिए, जमाने का एतबार नहीं होना चाहिए। कहते हैं वली अन्न क़ियाम अल असर मिन अक़वा दलालतिन अला शुर्बी, असर कहते हैं निशान को, असर किसे कहते हैं? निशान और अलामत। कहते हैं वली अन्न क़ियाम अल असर, इसलिए क्योंकि निशान का मौजूद होना, अलामत का मौजूद होना, मिन अक़वा दलालतिन अला शुर्बी, ये शुर्ब पर सबसे कवी दलीलों में से है। ये शुर्ब पर किसी ने नशा और मशरूब पिया है तो उस पर सबसे कवी दलीलों में से उस शुर्ब का असर है, उसकी निशानी है, उसकी अलामत है। और जब अलामत के जरिए पता चल सकता है तो जमाने की तरफ हम नहीं जाएंगे, क्योंकि जमाने की तरफ उस वक्त जाते हैं जब निशानी का एतबार करना मुमकिन ना रहे, जब निशानी का एतबार करना मुमकिन ना रहे फिर जमाने का एतबार करते हैं। और यहां तो निशानी का एतबार किया जा सकता है, निशानी मौजूद है कि उस शराब पीने वाले के मुंह से शराब की बू आती है भाई। तो कहते हैं वली अन्न क़ियाम अल असरी, और इसलिए क्योंकि निशान का मौजूद होना मिन अक्वा दलालतिन अल शुरबी, ये शुरब पर सबसे कवी दलीलों में से है। वह इन नमा युसारु इल तकदीर बि जमानी, और जमाने के साथ अंदाजा लगाने की तरफ उस वक्त जाया जाता है इंद तअज़्ज़ुर एतबारी ही, जब उस निशान का एतबार मुमकिन न रहे, जब निशानी का एतबार मुमकिन न रहे फिर जमाने की तरफ जाते हैं। वह तमयीज बैन रवाइह मुमकिनुन लिल मुस्तदिल्ली, इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते थे कि बू तो किसी और चीज की भी हो सकती है, बू की वजह से तो लोगों को इश्तबाह भी लग सकता है, तो उसका भी जवाब दे रहे हैं कि भाई जिस शख्स को बू की पहचान नहीं होगी यानी जाहिल होगा बू से उसको तो इश्तबाह लग सकता है, लेकिन जिसको बू की पहचान होगी उसको इश्तबाह नहीं लग सकता, वो मुंह सूंघते ही फौरन बता देगा कि इसने शराब पी है या नहीं पी। तो कहते हैं वह तमीज बैन रवाइह मुमकिनुन, और मुख्तलिफ चीजों की जो बू होती है उनके दरमियान फर्क मुमकिन है। रवाइह जमा है राइह की। वह तमीज बैन रवाइह मुमकिनुन, और मुख्तलिफ चीजों की जो बू होती है उसके दरमियान फर्क मुमकिन है। लिल मुस्तदिल्ली, इस्तेदलाल करने वाले के लिए, जो इस्तेदलाल करता है, जो इसको दलील बनाता है यानी जिसको पहचान है, उसके लिए मुख्तलिफ किस्म की बुओं में फर्क करना मुमकिन होता है। वह इन नमा तश्तबिहु अलल जुहाली, और यह मुख्तलिफ किस्म की जो बू है यह तो जाहिलों पर मुश्तबे होती हैं यानी जिनको इनकी पहचान नहीं है भाई। वह अमल इकरारू फतकादुमु ला युबतिलुहु, वह अमल इकरारू, और बाकी इकरार जो है भाई यह तो शहादत की बात थी कि शेखैन रहमतुल्लाह फरमाते हैं जब तक बू आ रही है या नशे में है तो हद आएगी, शहादत कबूल की जाएगी। और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि एक महीने का एतबार किया जाएगा, और बाकी अगर कोई शख्स इकरार करता है तो क्या इकरार में भी बू का एतबार है शेखैन रहमतुल्लाह के नजदीक या नहीं? तो याद रखो शेखैन रहमतुल्लाह फरमाते हैं इकरार के अंदर भी बू का एतबार किया जाएगा। अगर ये इकरार कर रहा है और मुंह से शराब की बू नहीं आ रही तो फिर बात पुरानी हो चुकी है भाई, जबकि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि नहीं, जिना के अंदर बात पुरानी भी हो जाए फिर भी इकरार मुतबर होता है, लिहाजा यहां पर भी बात पुरानी हो जाए फिर भी इकरार मुतबर होगा। तो कहते हैं वह अमल इकरार, और बाकी इकरार जो है फतकादुमु ला युबतिलुहु इंद मुहम्मदिन रहिमहुल्लाह, तो उसके अंदर पुराना होना वो इस इकरार को बातिल नहीं करता इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के नजदीक। कमा फी हद जिना, जैसे कि हद जिना के अंदर है अला मा मर तकरीरुहु, उस वजह से कि जो तकरीर गुजर गई, याद रखो कर्रा युकर्रिरु तकरीर का माना है साबित करना, तो अलामा मर्रा तकरीरुहु उस वजह से कि उसका इस बात गुजर गया। हमने पीछे साबित किया था कि जिना के अंदर अगर इकरार के अंदर जमाना ज्यादा भी गुजर जाए फिर भी उसको कबूल किया जाएगा, क्योंकि कोई शख्स अपने आप से दुश्मनी नहीं करता, इकरार के अंदर दिलों में बदगुमानी नहीं आती भाई। गवाह देर से आए वहां तो दिलों में बदगुमानी आती है कि शायद अब दुश्मनी की वजह से आए हैं, लेकिन इकरार अगर पुराना भी हो जाए तो वहां किसी किस्म की बदगुमानी दिलों में नहीं आती। तो यही बयान कर रहे हैं कि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि पुराना होना ये इकरार को बातिल नहीं करता। कमा फी हद जिना, जैसे कि हद जिना के अंदर है अला मा मर्रा तकरीरुहु, उस वजह से कि उसकी तकरीर यानी उसका इस बात गुजर गया। वइंदहुमा, और शेखैन रहमहुमल्ला के नजदीक ला युकामुल हद इल्ला इंद क़ियामिर राइहति, कि हद कायम नहीं की जाएगी मगर जिस वक्त शराब की बू मौजूद हो। अगर कोई इकरार भी करता है फिर भी हद कायम नहीं की जाएगी मगर उसी वक्त जब उसकी शराब की बू उसके मुंह से आ रही हो भाई। तो कहते हैं वह इंदहुम मा शेखैन रहमहुमल्लाह के नजदीक ला युकामुल हद, उस इकरार करने वाले पर हद कायम नहीं की जाएगी, इल्ला इंद कियामिर राइहति, मगर जिस वक्त शराब की बू मौजूद हो, लिअन्न हद शुर्ब सबत बि इजमाई सहाबती रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम, इसलिए क्योंकि हद शुर्ब जो है यह सहाबा के इजमा की वजह से साबित है, वला इजमा इल्ला बि रायि इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, और हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु की राय के बगैर तो इजमा नहीं हो सकता। भाई देखिए, ये जो हद शुर्ब है ये इजमा सहाबा से साबित है, इजमा सहाबा का माना है तमाम सहाबा ने इस पर इत्तेफाक किया, और हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु भी जलीलुल कदर सहाबा में से हैं, तो मालूम हुआ हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु की भी यही राय थी उनकी भी, क्योंकि अगर वो इख्तिलाफ करते, अगर वो इख्तिलाफ करते फिर तो इजमा ही नहीं हो सकता था जी। तो इजमा हुआ, मालूम हुआ हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु की भी यही राय थी, और वही हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमा रहे हैं, पीछे उनका कौल आया फइन वजा तुम राइहतल खम्र फजलिदूहू, कि अगर तुम शराब की बू पाओ उस आदमी से तो उसको कोड़े लगाओ। मालूम हुआ उन्होंने बू को शर्त करार दिया है कोड़े लगाने के लिए, देखो शर्त जिक्र कर रहे हैं, इन वजह तुम राइहतल खमरी, अगर तुम शराब की बू पाओ फजली दू हो तो इसको कोड़े लगाओ। तो मालूम हुआ कि यह हद शुर्ब जो है यह सहाबा के इजमा से साबित है, और सहाबा के इजमा में मालूम हुआ हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु भी शामिल हैं, और उनकी राय तो यह है कि जब बू आ रही हो तब ही कोड़े लगाओ। फिर देख लीजिए दलील, कहते हैं लिअन्न हद शुर्ब सबत बि इजमाई सहाबती रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम, इसलिए क्योंकि हद शुर्ब जो है वो सहाबा के इजमा से साबित है, वला इजमा इल्ला बि रायि इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और इजमा नहीं हो सकता हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की राय के बगैर, वक़द शरत क़ियाम राइहति, और तहकीक उन्होंने तो बू के मौजूद होने की शर्त लगाई है, अला मा रवैना, उस हदीस की वजह से जो हमने रिवायत की, उस हदीस की वजह से जो हमने रिवायत की, यानी उनका जो कौल हमने जिक्र किया। भाई यहां एक और अहम कीमती बात याद रखना, साहिब हिदाया ने बतलाया कि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के नजदीक हद शुर्ब के मामले में एक महीना गुजर जाए तो फिर बात पुरानी है, जबकि शेखैन रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि नशा खत्म हो जाए या मुंह से शराब की बू खत्म हो जाए तो बात पुरानी हो गई। तो साहिब हिदाया ने शेखैन रहिमहुमल्ला के कौल को तरजीह दी है, लेकिन आम उलमा जो हैं वो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के कौल को यहां तरजीह देते हैं कि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह का कौल इस सिलसिले में राजिह है। भाई आगे देखिए, फइन अखदहु शुहूदु वरीहुहा यूजदु मिन्हु औ हुवा सकरानु, सूरत मसला यह कि गवाहों ने एक शख्स को शराब पीते हुए देखा या कोई और नशा और मशरूब पीते हुए देखा, और उन्होंने उसको पकड़ लिया और उसको काजी के पास ले गए, लेकिन काजी का इलाका दूर था, वहां तक पहुंचते पहुंचते शराब की बू खत्म हो गई या वो नशा खत्म हो गया, तो क्या अब भी हद कायम की जाएगी या नहीं? कहते हैं अब तो उजर मौजूद है, अब तो उजर मौजूद है, लिहाजा अब हद कायम की जाएगी। कहते हैं फइन अखदहु शुहूदु, और अगर गवाहों ने उस आदमी को पकड़ा, वरीहुहा यूजदु मिन्हु, इस हाल में कि शराब की बू उससे आ रही थी, औ हुवा सकरानु, या इस हाल में कि वो मदहोश था, फज़हबू बिही मिन मिस्रिन इला मिस्रिन फीहिल इमामु, तो उसको लेकर चले मिन मिस्रिन एक शहर से, इला मिस्रिन एक ऐसे शहर की तरफ, फीहिल इमामु जिसमें इमाम है हाकिम है, फन कता जाली का कबल अंतहू बिही, तो वो बू या वो नशा जो है मुनकते हो गया, कबल अंतहू बिही कबल इसके कि वो इमाम तक पहुंचते, तो खुद दफी कौल हिम जमिया, तो इस सूरत में हद लगाई जाएगी इन सब के कौल में, यानी हमारे तीनों अइमा के कौल में फिर हद लगाई जाएगी। तो कहते हैं खुद दफी कौल हिम जमीआ, तो हमारे तीनों अइमा के कौल में हद लगाई जाएगी, लिअन्नहादा उज़रुन, इसलिए क्योंकि यह उज़र है, कबुअदिल मसाफति फी हद ज़िना, जैसे कि मसाफत की दूरी थी ज़िना की हद में, वहां पर भी अगर गवाह एक माह या इससे ज्यादा दूर रहते हैं फिर ये उजर है भाई, फिर उनकी गवाही भी वहां हद जिना में कबूल की जाएगी। तो कहते हैं कबूद इल मसाफती फी हद जिना, जैसे कि मसाफत की दूरी थी हद जिना में, व शाहिदुल्ला युत्तहम बिही फी मिसलिही, और गवाह जो है ला युत्तहम बिही उस पर कोई इल्जाम नहीं लगाया जाता फी मिसलिही इस जैसे उजरों में। व मन सकीरा मिनन नबी दिहुद्दा, सकीरा यस्करु के माने हैं नशा होना, नशे में मदहोश होना। व मन सकीरा मिनन नबी जिहुद्दा, नबीज भाई याद रखो नबीज जो है ये अरब किशमिश खजूर वगैरह से नबीज बनाते थे, किशमिश या खजूर वगैरह और बास चीजें थी उनसे नबीज बनाते थे, इन चीजों को वो पानी में डाल देते थे और फिर बाज औकात इनको थोड़ा सा पकाते भाई, कोई खास उनके तरीके थे जिसकी वजह से उसके अंदर भी नशा आ जाता था
जी।
उस नबीज में भी नशा आ जाता था और फिर उसको वो नशे के तौर पर इस्तेमाल करते थे भाई, नशे के तौर पर इस्तेमाल करते थे। तो लिहाजा अगर किसी को नबीज से नशा हो जाए, नबीज से नशा हो जाए तो इस सूरत में उसको भी हद लगाई जाएगी। और मैंने बतलाया कि इसके अंदर गवाहों का उसको नबीस पीते हुए यानी नशावर मशरूब पीते हुए देखना भी जरूरी है। इसको नशे की हालत में पकड़ा गया तो इस सूरत में हद नहीं आएगी, बल्कि या गवाही जरूरी या इकरार भी जरूरी। तो अगर इसको किसने नबीस पीते हुए देखा है और ये नशे में भी है फिर तो हद जारी की जाएगी। और अगर सिर्फ नशे में यह आदमी मिला और इसे पूछा क्या किया है, क्यों नशे में हो, इसने कहा मैंने नबीस पी है, तो फिर इस सूरत में हद साबित नहीं होगी, क्योंकि मैंने बतलाया था कि ये नशे में है, नशे में तो और भी ज्यादा इहतमाल है झूठ बोलने का। तो कहते हैं वमन सकीरा मिनन नबीज हुद्दा, और जिस शख्स को नशा हो गया नबीज से हुद्दा उसको भी हद लगाई जाएगी। लेकिन याद रखो यहां जो नबीज का लफ्ज आया इससे सिर्फ नबीज ही नहीं मुराद बल्कि हर नशा आवर मशरूब मुराद है। मैंने बताया अरब के तरीके थे, कई किस्म से ये नशावर मशरूब वो बनाते थे भाई, तो हर नशावर मशरूब इसमें दाखिल है। तो जिसको भी नबी से नशा हुआ उसको हद लगाई जाएगी। लिमा रुविया, उस हदीस की वजह से जो रिवायत की गई है कि अन्ना उमरा रजी अल्लाह ताला अन्हु अकाम अल हद अला अराबीन, कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हद कायम की थी एक ऐसे देहाती पर, अराबी देहाती भाई, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने हद कायम की थी अला अराबीन एक ऐसे देहाती पर, सकीरा मिनन नबीजी, जिसको नबी से नशा हो गया था, जो नबी से मदहोश हो गया था। व नुबय्यिनुल कलाम फी हद्दि सुक्री व मिकदारी हद्दिहिल मुस्तहक्कि अलैही इंशा अल्लाह तआला, साहिबे हिदाया फरमा रहे हैं व नुबय्यिनुल कलाम, और हम कलाम बयान करेंगे यानी हम जिक्र करेंगे, फी हद्दि सुक्री, सुक्र कहते हैं नशे को, फी हद्दि सुक्री नशे की हद में भाई, आगे नशे की हद बयान करेंगे। एक नशा है, एक नशा यह है कि आदमी हजियान बोलने लगे, हजियान कहते हैं ला अकली की बातें करना, जैसे एक आदमी का अकली तवाजुन दुरुस्त ना रहे, वो बेकार की बातें कर रहे हैं जिनका कोई माना कोई मफहूम नहीं है और कोई मकसद नहीं है उन बातों के करने का, तो यह है हजियान। तवज्जो है, तो अगर एक शख्स नशावर मशरूब पीता है और उसकी वजह से उसे इतना नशा चढ़ गया कि वो हजियान बोल रहा है, कभी कुछ बोलता है कभी कुछ, ला यानी बेमकसद बातें कर रहा है, कभी ठीक बात भी कर देता है और कभी कभी बेकार और फजूल बातें भी कर रहा है, तो इसको कहते हैं इस आदमी को नशा हो गया है। और बाज औकात नशा इतना ज्यादा हो जाता है कि आदमी को मर्द और औरत की भी पहचान नहीं रहती, उसे यह भी नहीं पता चलता यह मर्द है या औरत है, उसे जमीन और आसमान का भी पता नहीं चलता, इतना ज्यादा नशा हो जाता है। तो नशे की कितनी मिकदार मुआतबर है, हजियान वाली जो शुरू में ही आ जाती है या वो आखिरी हद जिसके अंदर जमीन और आसमान का भी पता नहीं चलता। तो इमाम साहब फरमाते हैं चूंकि हद का मामला है लिहाजा आखिरी हद का एतबार करेंगे, जिसको इतना नशा हो जाए कि जिसको मर्द और औरत की पहचान नहीं, जमीन और आसमान का पता नहीं चल रहा, इसको हद लगाई जाएगी। और इससे कम जो है वो तो कभी कभी ठीक बात भी बीच में कर देता है, तो उस पर तो कभी कभी सही होने का भी शुबा होता है और शुबे की वजह से हद साकित हो जाती है, लिहाजा इसको हद नहीं लगाएंगे। जबकि साहिबैन फरमाते नहीं, जब वो हजियान बोलने लगे, वो मिला जुला कलाम कर रहा है, कभी हजियान बोलता है, कभी कोई एक आध बात ठीक कर देता है, तो उर्फ के अंदर इसी आदमी को लोग मदहोश कहते हैं, लिहाजा नशा पाया गया, इसको भी हद लगाई जाएगी। तो यह माना है, कहते हैं वनुबय्यिनुल कलाम फी हद सुक्री, और हम कलाम बयान करेंगे नशे की हद में, नशे की हद में कि किस हद तक हो तो यह नशा है और उस पर हद आएगी भाई। वह मिकदारी हद हिल मुस्तहक अलैही, और वो हद जिसका इस्तेहकाक हो चुका है उसकी मिकदार के बारे में भी, उसके मिकदार के बारे में भी आगे साहिब हिदायत हद की मिकदार भी बतलाएंगे कि 80 कोड़े लगाए जाएंगे, 80 कोड़े लगाए जाएंगे। तवज्जो है, यह इबारत फिर देखो, वह नुबय्यिनुल कलाम फी हद सुक्री व मिकदार हद हिल मुस्तहक अलैही। साहिब हिदायत की फसीह और बलीग इबारतें चल रही हैं, एक जगह उन्होंने कहा फी हद सुक्री और आगे कहते हैं वह मिकदार हद ही, मिकदार हद सुक्री, तो क्या माना है, पहले हद सुकर से क्या मुराद है, नशे की हद, कितना नशा हो, और दूसरी हद से क्या मुराद है, हद शुर्ब, यानी वो जो 80 कोड़े लगाए जाएंगे। तो कहते हैं वनुबय्यिनुल कलाम फी हद सुक्री, और हम कलाम जिक्र करेंगे नशे की हद के बारे में भी, व मिकदार हद हिल मुस्तहक अलैही, और नशे की उस हद की मिकदार में भी जिसका इस्तेहकाक हो चुका है, जिसका ये शख्स हकदार हो चुका है, इंशा अल्लाह ताला। आगे देखिए, वला हद अला मौजिद मिनहु राइहतुल खमरी, मैंने आपको बतलाया था एक आदमी के मुंह से शराब की बू आ रही है तो उस पर हद नहीं लगाएंगे, बल्कि गवाही या इकरार भी जरूरी है। तवज्जो है, अब वही बयान कर रहे हैं, कहते हैं वला हद अला मौजिद मिनहु राइहतुल खमरी, और हद नहीं है उस शख्स पर जिससे शराब की बू पाई गई, यानी जिसके मुंह से शराब की बू आ रही है उस पर हद नहीं है, औ तकय्याहा, या उसने शराब की कै की, एक आदमी ने कै की भाई, शराब की कै की, तो उस पर भी हद नहीं है भाई। क्यों नहीं है, आगे बतलाएंगे। कहते हैं भाई अगर बू आ रही है मुंह से तो फिर भी हद नहीं, क्योंकि बू के अंदर तो और चीजों का भी इहतमाल है, हो सकता है किसी और चीज की बू हो, और अगर इसने कै की है शराब की फिर भी हद नहीं आएगी, क्योंकि हो सकता है इसको किसी ने जबरदस्ती पिलाई हो, या हो सकता है ये इस्तिरार की हालत में, मजबूरी की हालत में इसने शराब पी हो। आपने पढ़ा है कि अगर इंसान को खाने को कुछ नहीं मिला और अब अगर वो कुछ नहीं खाता तो उसकी जान ही चली जाएगी, तो इस सूरत में हराम चीज भी उसके लिए हलाल हो जाती है कि उस हराम में से वो इतनी थोड़ी सी मिकदार इस्तेमाल कर सकता है जिससे उसकी जान बच जाए। तो लिहाजा इसने शराब की कह की है, हो सकता है किसने इसे जबरदस्ती शराब पिलाई हो, और हो सकता है इसने मजबूरी की वजह से जान बचाने के लिए कुछ शराब पी हो। तो कहते हैं वला हद अला मौजिद मिनहु राइहतुल खमरी औ तकय्याहा, और हद नहीं है उस शख्स पर जिससे शराब की बू पाई गई, औ तकय्याहा, या उसने शराब की कह की, लिअन्न राइहता मुहतमिलतुन, इसलिए क्योंकि ये जो शराब की बू है मुहतमिलतुन, ये इहतमाल रखने वाली है, यानी इसमें और चीजों का भी इहतमाल है, वकदा शुरबु कद यकउ अन इकराहिन वस्तिरारिन, और इसी तरह शराब का पीना यह भी कभी कभार इकराह और इस्तिरार की वजह से भी होता है, फला युहद्दु सकरानु, लिहाजा उस मदहोश को हद नहीं लगाई जाएगी, हत्ता युअलमा, यहां तक यह बात मालूम हो जाए कि अन्नहु सकीरा मिनन नबीजी, कि इसको नबी से नशा हुआ है, यानी नशावर मशरूब पीने से नशा हुआ है। एक तो यह पता चल जाए कि नबीज पीने से, यानी नशावर मशरूब पीने से नशा हुआ है, वह शरी बहु तौअन, और यहां तक यह पता चल जाए कि इसने रजामंदी से पी है, रजामंदी से पीने का भी पता चले और नबीज का भी पता चले कि नबीज ही पी है, कोई और चीज नहीं है भाई। क्योंकि आगे चलकर आपको बताएंगे बास चीजें हलाल हैं और उनकी वजह से अगर नशा हो जाए तो फिर हद नहीं आएगी, जैसे भंग है, भंग, और उसकी वजह से नशा हो जाए तो हद नहीं आएगी भाई। अगरचे फासिक लोग उसको भी नशे के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर हद तो नहीं है, अलबत्ता काजी सजा दे सकता है जो सजा मुनासिब समझे भाई। कहते हैं फला युहद्दु सकरानु, तो मदहोश को हद नहीं लगाई जाएगी, हत्ता युअलमा अन्नहु सकिरा मिनन नबीसी व शरिबहु तौअन, यहां तक कि यह मालूम हो जाए कि यह नबीस पीने से मदहोश हुआ है और यह मालूम हो जाए कि इसने रजामंदी से इसको पिया है। लिअन्न सुकरा मिनल मुबाह, इसलिए क्योंकि मुबाह चीज के पीने से नशा होना ला यूजिबुल हद्दा, यह हद को वाजिब नहीं करता। कल बंजी वला बनी रिमा की, जैसे कि भंग है, बंज बंज इससे मुराद क्या है, भंग, वही गाफ जो है अरबी में जीम के साथ बदल गया भाई। और लबनी रिमाक, याद रखो रिमाक जमा है रमकतुन की, और रमका ये अरब जो है बाज औकात गैर अरबी नस्ल के घोड़े और घोड़ियां भी रखते थे खास मकासिद के लिए, तो ये रमका ये जो है गैर अरबी जो घोड़ी है, रमका गैर अरबी नस्ल की जो घोड़ी है इसको रमका कहते हैं और जमा रिमाक है, और इसका दूध हलाल है। आप पढ़ चुके हैं कि घोड़ा जो है वो हलाल है, इमाम साहब ने उसको मकरूह करार दिया है, लेकिन मकरूह भी उसके मुअज्जज होने की वजह से उसको मकरूह करार दिया है, क्योंकि घोड़ा जंगी जानवर है, जंगों में इस्तेमाल किया जाता है, तो इसलिए इमाम साहब ने इसको मकरूह करार दिया ताकि कहीं लोग इसको आम जिबा न करना शुरू कर दें। तो लिहाजा घोड़ी का दूध जो है वह हलाल है, और कोई इसका खास तरीका होगा जिससे इसके अंदर भी नशा आ जाता होगा, तो अब ये किसी ने ये घोड़ी का दूध पिया और इसको नशा हो गया तो इस पर भी हद जारी नहीं की जाएगी। तो कहते हैं लिअन्न सुक्रा मिनल मुबाह ला यूजिबुल हद्दा, इसलिए क्योंकि मुबाह चीज के इस्तेमाल से नशे का होना यह हद को साबित नहीं करता। कल बंजी, जैसे कि भंग है, वला बनी रेमा की, और जैसे कि घोड़ियों का दूध है। वकदा शुरबुल मुकरही ला यूजिबुल हद्दा, और इसी तरह मजबूर का पीना यह भी हद को वाजिब नहीं करता। एक आदमी ने तलवार निकाली और दूसरे से कहा यह शराब पियो वरना मैं तुम्हें कत्ल करता हूं या मैं तुम्हारा हाथ काटता हूं, तो मुकरह ने शराब पी, तो इस सूरत में भी हद वाजिब नहीं। यह माना है वकदा शुरबुल मुकरही, और इसी तरह मजबूर का शराब पीना ला यूजिबुल हद, यह हद को वाजिब नहीं करता। वला युहद हत्ता यजूल अनहु सुकरु, भाई एक आदमी है उसने नशा अवर मशरूब पिया और गवाह भी मौजूद हैं और उसको काजी के पास भी ले आए जबकि अभी नशा मौजूद था, तो काजी ने हद जारी करने का हुक्म दे दिया, लेकिन जब तक यह नशे में है हद नहीं लगाई जाएगी, इसलिए क्योंकि इस वक्त तो वो सुरूर में डूबा हुआ है, इसको जर्ब भी लगाएंगे इसको पूरी तकलीफ नहीं होगी भाई, लिहाजा जब नशा खत्म हो जाए फिर जर्ब लगाएंगे ताकि खूब तकलीफ हो इसको। तो कहते हैं वला युहद, और इसको हद भी नहीं लगाएंगे, हत्ता यजूल अनहु सुकरु, यहां तक कि इसे नशा दूर हो जाए। तहसीलन लिमकसूद इंजिजारी, इंजिजार का माना है रुकना भाई, तहसीलन लिमकसूद इंजिजारी, ताकि रुकने का मकसूद हासिल कर लिया जाए भाई। अगर अभी आप इसको जर्ब लगाएंगे इसको तो पूरी तकलीफ नहीं होगी, ये तो बाज नहीं आएगा, ये तो रुकेगा नहीं, तो इंजिजार यानी रुकना और बाज आना हासिल ना हुआ, लिहाजा जब नशा खत्म हो जाए अब जर्ब लगाओ, अब रुकना हासिल होगा, अब इसको इबरत होगी, आइंदा ऐसा नहीं करेगा, और लोगों को भी इबरत होगी वो भी ऐसा नहीं करेंगे। तो कहते हैं कि जब इसे नशा खत्म हो जाए फिर हद लगाएंगे। तहसील अली मकसूद इंजिजारी, बाज आ जाने का जो मकसूद है उसको हासिल करने के लिए। वहदुल खमरी व सुकरी फिल हुर्री समानू न सौता, वहदुल खमरी व सुकरी, और शराब की हद जो है और इसी तरह नशे की जो हद है, फिल हुर्री आजाद आदमी में, समानू न सौता वो 80 कोड़े हैं। देखो हदुल खमर भी बयान कर दी, वह हदुल सुक्र और नशे की हद भी बयान कर दी, दोनों का एक ही हुक्म है। तो कहते हैं वह हदुल खमरी व सुक्री फिल हुर्री समानू न सौता, और शराब और नशे की जो हद है फिल हुर्री आजाद आदमी में, समानू न सौता वो 80 कोड़े हैं। आजाद आदमी की कैद लगाए क्योंकि गुलाम की सजा निसफ होती है, तो गुलाम को 40 कोड़े लगाए जाएंगे भाई। और मैंने आपको बतलाया था कि हुजूर अलैहिस्सलाम के जमाने में शराब पीने वाले को 40 कोड़े लगाए जाते थे, और बाद में हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में इसको बढ़ा दिया, और तमाम सहाबा का इस पर इजमा हो गया भाई। तो कहते हैं आजाद आदमी के अंदर शराब और नशे की जो हद है वो 80 कोड़े हैं। लि इजमाई सहाबति रजी अल्लाह ताला अन्हुम, सहाबा किराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन के इजमा की वजह से। युफर्रकु अला बदनही कमा फी हद्दी ज़िना अला मा मर्रा। और ये जो 80 कोड़े हैं ये उस आदमी के एक बदन के एक ही हिस्से पर नहीं लगाएंगे बल्कि बदन पर फैलाकर लगाएंगे, इसलिए क्योंकि अगर एक ही उज्व पर आप 80 कोड़े लगाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो वो उज्व ही तलफ हो जाए
जी।
ऐसा ना हो वो उज्व ही तलफ हो जाए और जाया हो जाए। तो कहते हैं युफर रखो अला बदनी ही, ये कोड़े जो है तकसीम किए जाएंगे अला बदनी ही उसके बदन पर, कमाफी हद जीना जैसे कि हद जीना में है, अला मा मर्रा उस वजह से जो बात गुजर गई कि अगर एक ही उसको लगाएंगे वो तो शल हो जाएगा भाई। सुम युजर्रद फिल मशहूर मीनर रिवायती, फिर इसको नंगा किया जाएगा यानी कमीज उतारी जाएगी। आप हद जिना के अंदर भी पढ़ चुके हैं कि जिसको कोड़े लगाए जा रहे हैं अगर वो मर्द है तो उसकी कमीज उतार ली जाएगी। तो कहते हैं सुम युजर्रद फिल मशहूर मीनर रिवायती, फिर इस आदमी को कमीज से नंगा किया जाएगा मशहूर रिवायत के मुताबिक। वान मोहम्मदिन रहमहुल्लाह, और इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह से रिवायत है कि नहुला युजर्रद कि इसको नंगा नहीं किया जाएगा यानी इसकी कमीज नहीं उतारी जाएगी। इजहारन लितख्फीफ, नरमी को जाहिर करने के लिए, नरमी को जाहिर करने के लिए। भाई देखो अगर कमीज पहनी होगी तो भी जर्ब के अंदर कुछ ना कुछ तख्फीफ आ गई, तकलीफ के अंदर कुछ ना कुछ कमी आ जाएगी, और जब कमीज भी हटा देंगे नंगी कमर पर जर्ब लगेगी तो उसमें तकलीफ ज्यादा होगी। तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं ला युजर्रदू, इसको नंगा नहीं किया जाएगा यानी इसकी कमीज नहीं उतारी जाएगी। इजहारन लितख्फीफी, तख्फीफ के जाहिर करने के लिए, इस ज़र्ब के हल्का होने के, हल्का होने को जाहिर करने के लिए। लिअन्नहु लम यरिद बिही नस्सुन, इसलिए क्योंकि इसके साथ कोई नस वारिद नहीं हुई। लिअन्नहु लम यरिद बिही नस्सुन, इसके साथ कोई नस वारिद नहीं हुई, इसका क्या माना है? साहिबे हिदाया इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह की दलील जिक्र फरमा रहे हैं कि इसकी कमीज नहीं उतारी जाएगी तख़फीफ का इजहार करने के लिए, नरमी का इजहार करने के लिए। लिअन्नहु लम यरिद बिही नस्सुन, क्योंकि इसके साथ नस वारिद नहीं हुई। तो बाद शारहीन फरमाते हैं मुराद यह है कि कोई कतई नस इसके बारे में नहीं आई, सहाबा से तो शुर्ब की हद साबित है लेकिन खुद कोई कतई नस कुरान और हदीस से साबित नहीं है। जबकि बाद शारहीन फरमाते हैं कि लम यरिद बिही नस्सुन से मुराद जो है शुर्ब की हद की तरफ इशारा नहीं कि हद शुर्ब साबित नहीं है कतई नस से, बल्कि इरादा है तजरीद की तरफ, ये कपड़े उतारने के बारे में कोई कतई नस मौजूद नहीं है कि इसकी कमीज उतारी जाएगी। तो कहते हैं लिअन्नहु लम यरिद बिही नस्सुन, इसलिए क्योंकि इस तजरीद पर, एक कमीज उतारने पर कोई नस वारिद नहीं है। वह वजहुल मशहूरी, और मशहूर कौल की वजह यह है, भाई बतलाया था ना कि मशहूर रिवायत के मुताबिक इसके, इसको नंगा किया जाएगा यानी इसकी कमीज उतार लेंगे। अब उसकी वजह जिक्र कर रहे हैं कि क्यों, क्या वजह है इसकी कमीज क्यों उतारी जाएगी। तो कहते हैं वह वजहुल मशहूरी, और मशहूर रिवायत की वजह यह है कि अन्ना अजहर न तख्फीफ मर्रतन फला युअता बरुसानियन, कि हमने एक दफा तख्फीफ को जाहिर कर दिया, हमने एक मरतबा तख्फीफ को जाहिर कर दिया, हमने 100 कोड़े नहीं मुकर्रर किए जिना की तरह बल्कि कम तादाद रखी यानी 80 कोड़े मुकर्रर किए हैं, तो अदद के अंदर हमने एक दफा तख़फीफ जाहिर कर दी। जब अदद में तख़फीफ आ गई अब सिफत के अंदर तख़फीफ नहीं करेंगे कि कमीज के साथ ही लगाएं बल्कि कमीज उतार कर ज़र्ब लगाई जाएगी। अदद में तो हमने तख़फीफ कर दी अब सिफत में तख़फीफ नहीं की जाएगी। तो कहते हैं वजहुल मशहूरी, और मशहूर रिवायत की वजह यह है कि अन्ना अजहर न तख्फीफा, कि हमने तख्फीफ जाहिर कर दी मर्रतन एक मरतबा फला युअतबरु सानियन, लिहाजा दोबारा तख्फीफ का एतबार नहीं किया जाएगा कि सिफत में भी नरमी कर दें। तवज्जो है भाई, यहां ये साहिब हिदाया के कलाम पर नजर करें, फरमा रहे मशहूर रिवायत की वजह यह है अन्ना अजहर न तख्फीफ मर्रतन, हमने एक दफा तख्फीफ कर दी, ये हमसे कौन मुराद है? हमने एक मर्तबा तख़फ़ीफ़ कर दी, तो जवाब यह कि साहिब हिदाया की फसीह बलीग़ इबारतें चल रही हैं, गोया साहिब हिदाया जो हैं इजमा करने वालों की जुबान से बात कर रहे हैं। वो सहाबा जिन्होंने इजमा किया था, गोया वो कह रहे हैं हमने एक दफा अदद में तख़फ़ीफ़ कर दी, अब सिफत के अंदर हम तख़फ़ीफ़ नहीं करेंगे। भाई तो मालूम हुआ यह किन की जुबान में बात हो रही है, इजमा करने वालों की जुबान में। कहते हैं वजहुल मशहूरी, और मशहूर कौल की वजह यह है अन्ना अजहर न तख़फ़ीफ मर्रतन, कि एक मरतबा हमने तख़फ़ीफ जाहिर कर दी, फला युअतबरु सानियन, तो दोबारा अब उस तख़फ़ीफ का एतबार नहीं किया जाएगा। वह इनका ना अबदन, और वो जो शख्स है जिसने शराब पी है या नशावर मशरूब पिया है, अगर वो गुलाम है, व इन काना अब्दन, और अगर वो शख्स गुलाम है, फहदुहु अरबाउना, तो उसकी हद जो है 40 कोड़े हैं, लिअन्नर रिक्का मुनस्सिफुन अला मा उरिफा, इसलिए क्योंकि गुलामी जो है मुनस्सिफुन वो तंसीफ करने वाली है, तो वो चीजों को आधा करने वाली है, अला मा उरिफा उस वजह से जिसको जान लिया गया, यानी जो तफसील हम पीछे बयान कर चुके या जो तफसील उसूल फिका की किताबों में मजकूर है भाई, कि गुलामी की वजह से हुक्म के अंदर नरमी आ जाती है, कमी आ जाती है, तंसीफ हो जाती है, यानी आधा हो जाता है हुक्म भाई। आगे देखिए वह मन अकर्र बिशुर बिल खमरी अविसकरी, यहां सुकर नहीं पढ़ना भाई, यहां सकर पढ़ना, सकर सीन पर भी फथा और काफ पर भी फथा, याद रखो सुकर का माना है नशा, सुकर सीन पर जम्मा और काफ साकिन, सुकर का क्या माना नशा, और सकर सकर नशा आवर मशरूब को कहते हैं, सुकर नशा और सकर नशा आवर मशरूब, और फिर बिलखसूस नशा आवर मशरूब के अंदर भी कहते हैं ये ताजा खजूरों का रस होता है उसको किसी खास तरीके से बनाते हैं जिससे उसके अंदर नशा आ जाता है, तो वो मुराद है, वो जो ताजा खजूर का जो रस है और उससे जो नशावर मशरूब बनाया है उसको सकर कहते हैं। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वमन अकर्र बिशुर बिल खमरी अविस सकरी, और जिस शख्स ने इकरार किया शराब पीने का, अविस सकरी या उस खास नशावर मशरूब के पीने का, सुम्मा रजा, फिर उसने रुजो कर लिया, एक दफा इकरार किया फिर रुजो कर लिया, लम यो हद्दा, इसको भी हद नहीं लगाएंगे, लिअन्नहु खालिस हक़िल्लाह तआला, इसलिए क्योंकि यह हद शुर्ब जो है यह खालिस अल्लाह का हक है। वयस्बुतु शुर्ब भी शहादति शाहिदैनी, और नीज ये शुर्ब साबित हो जाता है दो गवाहों की गवाही से। भाई जिना के अंदर तो चार गवाह चाहिए थे लेकिन यहां शुर्ब के अंदर दो गवाह भी काफी हैं। तो कहते हैं वयस्बुतु शुर्ब भी शहादति शाहिदैनी, और शुर्ब जो है साबित हो जाता है दो गवाहों की गवाही से। वयस्बुतु बिल इकरार मर्रतन वाहिदतन, और शुर्ब साबित हो जाता है एक मर्तबा के इकरार से। भाई जिना के अंदर तो चार इकरार चाहिए थे चार अलग अलग मजलिसों में, लेकिन शुर्ब के अंदर एक ही इकरार काफी है, एक ही इकरार। तो कहते हैं वयस बुतु बिल इकरार मर्रतन वाहिदतन, और शुर्ब साबित हो जाएगा एक ही मर्तबा के इकरार से। वान अबी यूसुफ रहिमहुल्ला, और इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्ला से रिवायत है कि अन्नहु युश्तरतुल इकरार मर्रतैनी, कि यहां पर भी दो मर्तबा इकरार शर्त है। वो फरमाते हैं शुर्ब के अंदर गवाह दो चाहिए तो इकरार भी दो होने चाहिए अलग अलग मजलिसों में, जैसे शराब की हद में चार गवाह जरूरी थे तो वहां इकरार भी चार अलग अलग मजलिसों में जरूरी था। तो इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्ला फरमाते हैं कि हद का मामला है और नाजुक मामला है, लिहाजा जैसे जिना में चार गवाहों की वजह से चार इकरार जरूरी थे तो यहां पर दो गवाहों की वजह से दो इकरार जरूरी होंगे अलग अलग मजलिस में। इसी तरह चोरी का मामला है, हमारे नजदीक चोरी के अंदर दो गवाहों की गवाही से चोरी भी साबित हो जाएगी और एक दफा के इकरार से भी चोरी साबित हो जाएगी, जबकि इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह चोरी के मसले में भी फरमाते हैं कि यहां गवाह दो चाहिए तो इकरार भी दो चाहिए अलग अलग मजलिस में, फिर ही हद सरीका साबित होगी। तो कहते हैं वान अबी यूसुफ रहमला, और इमाम अबू यूसुफ रहमला से रिवायत है कि अन्नहु युश्तरतुल इकरार मर्रतैनी, कि इसके अंदर भी दो मर्तबा इकरार शर्त है। वह हुआ नजीरुल इख्तिलाफ फिस सरिकती, और ये सरिका के अंदर इख्तिलाफ की नजीर है, यानी ये इख्तिलाफ भी उसी इख्तिलाफ के मिसल है। वसनुबय्यिनुहा हुना का इंशा अल्लाह, और अन करीब हम उसको वहां पर बयान करेंगे। आगे हद सरीका आएगी, वहां ये इख्तिलाफ साहिब हिदायत जिक्र करेंगे। वला युकबलु फीही शहादतुन निसाई मअर रिजाल, और हद शुर्ब के अंदर औरतों की गवाही कबूल नहीं की जाएगी। मअर रिजाली मर्दों के साथ, यानी एक मर्द और दो औरतें गवाही देना चाहती हैं हद शुर्म के लिए, कहते हैं नहीं, यहां औरतों की गवाही कबूल नहीं, क्योंकि मैंने आपको बतलाया था कि हुदूद के मसले में औरतों की गवाही कबूल नहीं की जाएगी। तो कहते हैं वला युकबलु फीही शहादतुन निसाई मअर रिजाली, और हद शुर्ब के अंदर औरतों की गवाही मर्दों के साथ कबूल नहीं की जाएगी। लिअन्न फीही शुबहतल बदलियति, इसलिए क्योंकि इसके अंदर बदल होने का शुबहा है, औरतों की गवाही में बदल होने का शुबहा है। वह तोहमत जलाली व निस्यानी, और नीज इसके अंदर भूलने की बदगुमानी दिलों में आती है। भाई भूलने की बदगुमानी या भूलने का इल्जाम आता है यहां पर। भाई भाई देखो ये जगह समझ लें, लिअन्न फीही शुबहतल बदलियति, औरतों की गवाही में बदल होने का शुबा है। भाई भाई अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि मामलात के अंदर दो आदमियों को गवाह बना लिया करो जी। अपने दरमियान जो मामलात हैं उसमें दो आदमियों को गवाह बना लिया करो। फइन लम यकूना रजुलैनी, अगर दो आदमी ना हो, फरजुलुन व इमरातानी, तो फिर एक मर्द और दो औरतें जो हैं उनको गवाह बना लिया करो। मिम्मन तरज़ौन मिन अश्शुहदाई, जिनको तुम पसंद करो गवाहों में से। अगर दो मर्द ना हो तो एक मर्द और दो औरतों को उन गवाहों में से गवाह बना लो जिन्हें तुम पसंद करते हो। अंत ज़िल्ला इहदाहुमा, अगर उनमें से एक औरत भूल जाए, फतुज़क्किरा इहदाहुमल उखरा, तो दूसरी औरत उसको याद करवा देगी। तवज्जो है, तो देखो कुरान के अंदर है, फइन लम यकूना रजुलैनी, अगर दो मर्द ना हो, फरजुलुन व इमरातानी, तो एक मर्द और दो औरतें जी। इस आयत से शुबा होता है कि जब दो मर्दों को गवाह बनाने से हम आजीज आ जाएं, मर्द सिर्फ एक ही है, तो फिर साथ दो औरतों को भी गवाह बना सकते हैं, यानी वो दो औरतें एक मर्द के कायम मकाम हैं, उसका बदल है। भाई तवज्जो है, उसका बदल है। भाई फइल्लम यकूना रजुलैनी, अगर दो मर्द ना हो, फरजुलुन व इमरातानी, तो एक मर्द और दो औरतें। तो नस से कुरान से शुबा होता है कि शायद ये जो दो औरतें हैं ये उस एक मर्द से बदल हैं, दूसरा मर्द नहीं है, तो उसकी जगह दो औरतें आ गई, यानी ये उसका बदल है। लेकिन फुकहा फरमाते हैं कि अगर एक मसले में मर्द गवाह मौजूद हैं, फिर भी अगर आप एक मर्द और दो औरतों को गवाह के तौर पर पेश करें, फिर भी उनकी गवाही कबूल की जाएगी। मसलन मेरे और जैद के दरमियान बैह हुई थी और जैद जो है उस बैह का इनकार कर रहा है, और दो मर्द भी गवाह मौजूद हैं और दो औरतें भी गवाह मौजूद हैं, तो फुकहा फरमाते हैं चाहे इन दोनों मर्दों को बतौर गवाह के पेश कर दें, फिर भी ठीक है, बात साबित हो जाएगी, और चाहे तो एक मर्द और दो औरतों को गवाह बनाकर पेश कर दें, फिर भी बात साबित हो जाएगी। तो देखो यहां पर हम दो मर्दों से आजिज नहीं, दो को हम गवाह के तौर पर पेश कर सकते हैं, लेकिन फिर भी फुकहा फरमाते हैं औरतों की गवाही कबूल की जाएगी। बात समझ में आ गई। तो हकीकत में तो ये जो औरतें हैं ये मर्द से बदल नहीं, हकीकत में ये औरतें मर्द से बदल नहीं हैं, लेकिन नस से तो शुबा होता है कि शायद ये दो औरतें एक मर्द से बदल हैं, तो बदल होने का शुबा आ गया, औरतों की गवाही में बदल होने का शुबा आ गया, और शुबे की वजह से हद साकित हो जाती है, लिहाजा औरतों की गवाही की वजह से हद साबित नहीं होगी। तो यह माना है कि औरतों की गवाही कबूल नहीं की जाएगी। लिअन्न फीहा शुबहतल बदलियति, इसलिए क्योंकि औरतों की गवाही में बदल होने का शुबा है। भाई बदल तो नहीं लेकिन बदल होने का शुबा है, आयत से शुबा पड़ता है भाई, तो इसलिए औरतों की गवाही कबूल नहीं की जाएगी। और नीज इसलिए वह तोहमत जलाल व निस्यानी, याद रखो जल्ला या जिल्लू का एक माना है भूल जाना, और यही माना कुरान के अंदर भी मुराद है। कुरान में इसी आयत में आगे क्या आता है, अंत जिल्ला इहदाहुमा, अगर उन दोनों में से एक औरत भूल जाए, فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى, تو اس کو وہ دوسری عورت یاد کروا دے گی. تو یہاں آیا تُهْمَةَ الضَّلَالِ, بھائی ضلال کا معنی ہے بھول جانا. تو کہتے ہیں وَتُهْمَةَ الضَّلَالِ وَالنِّسْيَانِ, اور ان کے اندر بھول جانے کی بدگمانی ہوتی ہے. عورتوں میں بھول جانے کی بدگمانی ہوتی ہے کہ یہ گواہی دے رہی ہیں, ہو سکتا ہے یہ بھول گئی ہوں بھائی. تو ضلال کا معنی بھی بھول جانا, ون نسیان, نسیان کا معنی بھی بھول جانا. تو یہ جو ون نسیان آیا یہ عطف تفسیری ہے. یہ نسیان ماقبل میں ضلال کا لفظ آیا اسی کا معنی بیان کر رہا ہے بھائی. تو ایک صورت یہ تھی کہ صاحب ہدایہ یوں فرماتے وتہمت الضلالی عین نسیانی, حرف ای لے کر آتے تفسیر کے لیے, لیکن صاحب ہدایہ چونکہ ادیب ہیں تو انہوں نے عطف تفسیری کے ساتھ اس کا معنی ذکر کر دیا ادیبانہ انداز میں بھائی. تو کہتے ہیں وتہمت الضلالی و نسیانی, اور بھول جانے کی بدگمانی کی وجہ سے کہ اس کے اندر عورتوں کی گواہی میں بھول جانے کی بدگمانی ہے بھائی. آگے دیکھیے وسکران الذی یحدہ, اب وہ نشے کی حد بیان کریں گے جو میں نے پہلے بیان کر دیا کہ صاحبین کے نزدیک نشہ یہ ہے کہ آدمی ہزیان بکنے لگے, لا عقلی کی باتیں کرنے لگے, اور امام صاحب کے نزدیک نشہ یہ ہے کہ آدمی کو زمین اور آسمان کا پتہ ہی نہیں چل رہا. وسکران الذی یحدہ, اور وہ مدہوش جس کو حد لگائی جائے. سکران وہ مدہوش اور نشے میں جو آدمی ہے وہ کتنا مدہوش ہے کہ اس کو حد لگائی جائے گی. تو کہتے ہیں وسکران الذی یحد, اور وہ مدہوش جس کو حد لگائی جائے گی. والذی لا یعقل منطقا, وہ آدمی ہے جو منطق کو یعنی کلام کو نہیں سمجھتا, یعنی اس کی عقل بالکل کام نہیں کر رہی, وہ باتوں کو بالکل نہیں سمجھ رہا. لا قلیلا ولا کثیرا, نہ تھوڑا اور نہ زیادہ بھائی. ولا یعقل الرجل من المرأتی, اور نہ وہ مرد کو پہچان رہا ہے عورت کے مقابلے میں, یعنی وہ مرد اور عورت کے درمیان فرق کرنے پر بھی اب قادر نہیں ہے, اتنے نشے میں ہے اس کو زمین اور آسمان کا بھی پتہ نہیں چل رہا کہ زمین کیا ہے اور آسمان کیا ہے. وقال العبد الضعیف, اس سے مراد صاحب ہدایہ ہیں. متن میں کیا آیا؟ وہ نشہ جس کی وجہ سے حد ہو جائے, وہ نشہ ہے جس کی وجہ سے آدمی بات سمجھتا ہی نہیں ہے, نہ اس کو تھوڑی بات سمجھ میں آتی ہے نہ زیادہ, اور نہ اس کو زمین اور آسمان کا پتہ چلتا ہے, وہ مرد اور عورت میں فرق نہیں کر سکتا, یعنی عقل بالکل ختم ہو جاتی ہے. اور میں نے بتلایا تھا کہ یہ شرط امام صاحب کے نزدیک ہے, عقل کا پورے طور پر ختم ہو جانا یہ کس کے نزدیک ہے؟ امام صاحب کے نزدیک ہے. اب وہی صاحب ہدایہ بیان کریں گے کہ جو متن میں آیا یہ امام صاحب کا قول ہے. تو کہتے ہیں وقال العبد الضعیف, اور اللہ کا کمزور بندہ کہتا ہے وہذا عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ, اور یہ جو ہے یہ امام صاحب کے نزدیک ہے. وقال, اور صاحبین فرماتے ہیں هو الذی یحزی, کہ مدہوش وہ ہے یحزی جو ہزیان بکتا ہے, جو آل فال گفتگو کرتا ہے, یعنی جو ایسی باتیں کر رہا ہے جیسے وہ شخص کرتا ہے جس کا عقلی توازن درست نہ ہو بھائی, یعنی لا یعنی اور بیکار فضول باتیں کر رہا ہے, اس کو ہزیان کہتے ہیں. تو صاحبین فرماتے ہیں هو الذی یحزی, کہ مدہوش وہ شخص ہے جو ہزیان بکتا ہے. ویختلط کلامہ, اور اس کا کلام ملا جلا ہوتا ہے, اس کا کلام ملا جلا ہوتا ہے, کبھی ناعقلی کی باتیں کرنے لگتا ہے اور کبھی ٹھیک باتیں کرنے لگتا ہے. تو کہتے ہیں ویختلط کلامہ, اور اس کا کلام جو ہے ملا جلا ہوتا ہے. لئنہ ہوا سکران فی العرف, اس لیے کیونکہ یہی مدہوش ہے عرف میں, اسی کو لوگ مدہوش کہتے ہیں کہ نشے میں ہے. وإليه مال اکثر المشائخ رحمهم اللہ, اور اسی کی طرح مائل ہوئے ہیں اکثر فقہا. صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں اکثر فقہا جو ہیں وہ صاحبین کے قول کی طرف گئے ہیں بھائی. تو کہتے ہیں وإليه مال اکثر المشائخ, اور اسی کی طرف اکثر فقہا مائل ہوئے ہیں. ولہ, اب امام صاحب کی دلیل آ گئی. ولہ, اور امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ انہ یؤخذ فی اسباب الحدود باقصاها, انہو یؤخذو, کہ اس کا مواخذہ کیا جائے گا. یاد رکھو آخذہ یا اخذو کا معنی پکڑنا بھی, آخذہ یا اخذو کا معنی سزا دینا بھی, آخذہ یا اخذو کا معنی مواخذہ کرنا بھی. تو یؤخذو اس کو پکڑا جائے گا, یعنی اس کا مواخذہ کیا جائے گا. तो वह लहू इमाम साहब की दलील यह है कि अन्नहू युखज़ु, के इसका मुआखजा किया जाएगा, फी असबाबिल हुदूद, हुदूद के असबाब में, भी अकसाहा आखिरी किनारे के, हुदूद के असबाब में से जो आखिरी किनारे का सबब है उसके साथ इसको मुआखजा होगा, यानी इंतहा दर्जे का जब नशा होगा तब ही इस पर हद जारी की जाएगी, क्योंकि हुदूद का मामला बड़ा नाजुक है भाई। तो वलहु इमाम साहब की दलील यह है अन्नहु युखज़ु फी असबाबिल हुदूद भी अक्साहा, कि इस आदमी का मुआखजा किया जाएगा हुदूद के असबाब के अंदर, इंतहा दर्जे के असबाब के जरिए, दर अन लिल हद्दी, हद को टालने के लिए, दर अन लिल हद्दी, हद को टालने के लिए, व निहायतु सुकरी, और नशे की इंतहा यह है कि अन यगलिब सुरूर अलल अक्ली, के सुरूर इसकी अकल पर गालिब आ जाए, फयसलुबुहु तमीज बैन शैइन व शैइन, तो यह सुरूर जो है सल्ब कर दे यानी खत्म कर दे, अतमीज फर्क करने को, बैन शैइन व शैइन, एक चीज और दूसरी चीज में, यानी सुरूर इतना उसकी अकल पर गालिब आ जाए कि वो एक चीज का दूसरी चीज से फर्क न कर सके भाई। तो कहते हैं वनिहायतु सुकरी, और नशे की इंतहा यह है, अय्यगलिबा सुरूर अलल अक्ली, कि सुरूर उसकी अकल पर गालिब आ जाए, फयसलुबुहु तमीज बैन शैइन व शैइन, तो एक चीज का दूसरी चीज से फर्क करना जो है इसको वो सुरूर सल्ब कर ले, इसको खत्म कर दे, वमा दूना जालिका, और जो नशा इससे कम होगा, ला यारा अन शुभति सहवी, सहा यसहु सहवन का माना है होश में आना, सहा यसहु सहवन का क्या माना है होश में आना, यानी नशे का खत्म होना, वमा दूना जालिका, और इससे जो कम नशा होगा, ला यारा वो खाली नहीं है, अन शुभति सहवी होश के शुबे से, इससे कम नशा होगा तो उसमें तो होश का भी शुबा है कि आदमी होश में है और शुबे की वजह से हद साकित हो जाती है। आगे देखिए कहते हैं वल मुअतबरु फिल कदहिल मुस्किरी फी हकिल हुरमति मा कालाहु बिल इजमा। तो देखिए भाई नशे के दो तारीखें कर दी, इमाम साहब के नजदीक नशे से मुराद यहां इंतहा दर्जे का नशा है, और साहिबैन के नजदीक नशे से वो मुराद है जिसे उर्फ में नशा कहा जाता है कि आदमी जो है मिला जुला कलाम करने लगे। तो अब हुरमत का मसला आया भाई, हुरमत का मसला याद रखो, ये जो नबीज है ना, ये किशमिश खजूर वगैरह और चीजों से अरब जो है नबीज बनाते थे, ये सिर्फ नशे के लिए ही नहीं बनाते थे बल्कि कुव्वत और ताकत के लिए भी बनाते थे। कोई शख्स बीमार होता या कमजोर होता तो उसे नबीज तैयार करके पिलाते थे ताकि वो जल्द से जल्द कुव्वत हासिल कर ले और उसकी सेहत बहाल हो जाए। तो यह नबीज ताकत और कुव्वत के लिए भी इस्तेमाल की जाती थी भाई। तो लिहाजा अब मसलन ये नबीज तैयार की और ऐसी नबीज है जो नशा आवर है, अब इसके अंदर भी देखो इसको एक गिलास पीते ही फौरन आदमी को नशा नहीं होता, मसलन दो गिलास पिए फिर भी नशा नहीं होता, तीसरा गिलास पिए तो अब वो नशा हो जाता है, यानी वो हजियान बकने लगता है, वो मिला जुला कलाम करने लगता है, और चौथा गिलास भी पी ले तो फिर इंतहा दर्जे का नशा हो जाता है, तो फिर जमीन और आसमान का फर्क भी उससे नहीं होता भाई। तवज्जो है, तो नशे के अंदर तो इमाम साहब ने आखिरी हद बयान की है, लेकिन हराम होने में उन्होंने साहिबैन के कौल को इख्तियार किया है भाई। देखो एक नशावर मशरूब है लेकिन एक या दो गिलास पीने से नशा नहीं होता, यह कुव्वत तो देगा लेकिन इससे नशा नहीं होगा, हां तीसरा गिलास पिए तो वह साहिबैन ने जो बयान किया था उस दर्जे का नशा है, चौथा गिलास पिए तो उस दर्जे का नशा है जो इमाम साहिब ने बयान किया इंतहा दर्जे का नशा। तो इस मशरूब के कितने गिलास पीना जायज होगा, कोई आदमी पी सकता है या नहीं पी सकता? तो याद रखो दो गिलास से तो नशा नहीं होता, उसमें तो इख्तिलाफ ही नहीं है, वो कोई भी आदमी पीना चाहे पी सकता है क्योंकि दो गिलास से नशा नहीं होगा, लेकिन तीसरे गिलास से वो कम दर्जे का नशा हो जाएगा। तो इमाम साहब ने यहां साहिबैन के कौल को इख्तियार किया और वो फरमाते हैं ये तीसरे गिलास से नशा हो रहा है लिहाजा ये हराम है जी। ये तीसरा गिलास पीना ही हराम है भाई क्योंकि इसकी वजह से नशा हो रहा है। हालांकि कितना नशा हो रहा है जो साहिबैन ने बयान किया था, इमाम साहब ने जो हद बयान की वो तो चौथे गिलास में आएगा वो नशा, लेकिन इमाम साहब ने चौथे गिलास को हराम करार नहीं दिया बल्कि यहां तीसरे गिलास को ही हराम करार दिया बतौर एहतियात के, क्योंकि हराम और हलाल की बात चल रही है तो एहतियात इसी में है कि तीसरे गिलास को ही हराम करार दे दिया जाए। और वहां हद का मसला था तो वहां पर इंतहा दर्जे का नशा बयान किया, क्योंकि वहां हद का मसला था तो वहां एहतियात का तकाजा यह था कि इंतहा दर्जे के नशे का एतबार किया जाए, और यहां पर हराम और हलाल का मसला है तो यहां एहतियात इसमें है कि कम दर्जे पर ही हराम होने का हुक्म लगा दिया जाए। तो कहते हैं वल मुअतबरु फिल कदहिल मुस्किरी, कदह प्याले को कहते हैं, वल मुअतबरु फिल कदहिल मुस्किरी फी हक़िल हुर्मती, और हुर्मत के हक में नशावर प्याले के अंदर वो नशा मुअतबर है, मा कालाहू जो साहिबैन ने कहा है, बिल इजमाई बिल इजमा, यानी इसमें हमारे तीनों अइमा का इत्तेफाक है, प्याले के हराम होने में वो मिकदार है जो जो साहिबैन ने कही है। फिर तर्जमा देख लीजिए, तो कहते हैं वल मुअतबरु फिल कदहिल मुस्किरी फी हक़िल हुर्मति मा कालाहु बिल इजमाई, और कहते हैं कि हुर्मत के बारे में नशावर प्याले के अंदर बिल इजमा वो नशा मुअतबर है, मा कालाहु जो साहिबैन ने कहा है, वो नशा मुअतबर है जो साहिबैन ने कहा है, यानी जिसमें वो हजियान बकने लगता है और मिला जुला कलाम करता है। भाई अखज़म बिल एहतियाती, एहतियात को लेते हुए, व शाफ़ईयु रहमहुल्लाहु तआला यातबिरु ज़ुहूर असरिही फी मिशयतिही व हरकातिही व अतराफिही, और इमाम शाफ़ई रहमहुल्लाह एतबार करते हैं ज़ुहूर असरिही कि उस नशे का असर जाहिर हो जाए, फी मिशयतिही उस आदमी के चलने में, व हरकातिही और उसकी हरकात व सकनात में, व अतराफिही और उसके आज़ा में। इमाम शाफ़ई रहमहुल्लाह नशे के अंदर उसके असर के जाहिर होने का एतबार करते हैं कि उस वो आदमी जिसने नशा किया है उसके चलने में, उसकी हरकत व सकनात में और उसके आज़ा पर नशे का असर जाहिर हो रहा हो। भाई तो कहते हैं व शाफ़ई रहमहुल्लाह ताला यातबिरु ज़ुहूर असरिही, और इमाम शाफ़ई रहमहुल्लाह उस नशे के असर के जाहिर होने का एतबार करते हैं, फी मिशयतिही उस आदमी के चलने में, व हरकातिही और उसकी हरकात में, व अतराफिही और उसके आज़ा में, वहादा मिम्मा यतफावतु और ये तो उन चीजों में से है जो मुख्तलिफ होती है, फला माना ले एतबार ही लिहाजा कोई सबब नहीं है इसका एतबार करने का। ये इमाम शाफ़ई रहमहुल्लाह ने जिस चीज का एतबार किया है उसको रद्द कर रहे हैं, कोई वजह नहीं है इनका एतबार किया जाए क्योंकि ये लोगों के एतबार से मुख्तलिफ होती हैं। बाज़ औक़ात एक आदमी ने नशा किया होता है लेकिन वो बिल्कुल ठीक तरीके से चल रहा होता है, और बाज़ औक़ात एक आदमी होश में होता है लेकिन फिर भी वो डोलता हुआ चल रहा होता है या उसके आज़ा डोल रहे होते हैं, लिहाजा इसका एतबार नहीं किया जाएगा। तो ये माना है वहादा मिम्मा यतफावतु और ये तो उन चीजों में है जो मुख्तलिफ होती है, फला माना ले एतबारी ही लिहाजा कोई सबब नहीं है कि इसका एतबार किया जाए, वला युहद्दु सकरानु बिकरारी ही अला नफसी ही और हद नहीं लगाई जाएगी मदहोश को, बिकरारी ही अला नफसी ही अपने खिलाफ इकरार की वजह से। अगर कोई मदहोश आदमी अपने खिलाफ इकरार कर लेता है कि मैंने चोरी की है या नशे में है और कहता है मैंने शराब पी है तो ये इकरार मुअतबर नहीं, क्योंकि हद शुर्ब भी क्या है, खालिस अल्लाह का हक, और इसी तरह जिना का इकरार कर लेता है नशे के अंदर तो हद जिना भी खालिस अल्लाह का हक है, तो ये हुदूद इसकी वजह से साबित नहीं होंगी। भाई तो कहते हैं वला युहद्दु सकरानु बिकरारी ही अला नफसी ही और मदहोश को हद नहीं लगाई जाएगी अपने खिलाफ इकरार करने की वजह से, लि ज़ियादति इहतिमालिल कज़्बी फी इकरारी ही इसलिए क्योंकि इसके इकरार के अंदर झूठ का ज्यादा इहतिमाल है, फयुहतालु लिदरई ही लिहाजा हीला किया जाएगा उस हद को टालने के लिए कि ये तो नशे में बोल रहा है इसको होश नहीं, लिहाजा इसने जो नशे में जिना का इकरार किया है या चोरी का इकरार किया है या शराब पीने का इकरार किया है उसकी वजह से इसको हद नहीं लगाई जाएगी। तो कहते हैं फयुहताल उली दर ही, तो हीला किया जाएगा उसकी हद को दूर करने के लिए, ले अन्नहु खालिसु हक़्किल्लाहि तआला, इसलिए क्योंकि ये खालिस अल्लाह का हक है, बिखिलाफ हद्दिल क़ज़्फ़, बखिलाफ हद्दे क़ज़्फ़ के, अगर वो नशे में कहता है कि मैंने फुलां पर जिना का इल्जाम लगाया था, तो अब याद रखो इसका एतबार है भाई, क्योंकि हद कजफ खालिस अल्लाह का हक नहीं है बल्कि इसमें बंदे का भी हक है भाई। और नीज इसका एतबार जजरन भी किया जाएगा बतौर डांट और बतौर सजा के, जैसे मदहोश आदमी अपनी बीवी को तलाक दे तो तलाक भी वाकई हो जाती है, मदहोश आदमी अपने गुलाम को आजाद करे तो वह गुलाम भी आजाद हो जाता है, तो जैसे बतौर डांट के और बतौर सजा के मदहोश के दीगर तसरुफात नाफिज हो जाते हैं बतौर सजा के, कि इसने खुद नशा किया है तो ये तसरुफात नाफिस करार दिए जाते हैं, तो इसी तरह यहां पर भी बतौर डांट के इस हद कजफ का एतबार किया जाएगा और इसकी वजह से इस पर हद कजफ जारी की जाएगी भाई। कहते हैं बेखिलाफ हद दिल कजफी, बखिलाफ हद कजफ के, लिए अन नफी हक अल अब्दी, इसलिए क्योंकि हद कजफ के अंदर बंदे का हक है, व सकरान उफी हिकसाही, और बंदे के हक के बारे में जो मदहोश होता है का साही वो भी होश वाले की तरह होता है, बंदे के हक में मदहोश भी होश वाले की तरह होता है। तो कहते हैं ली अन फी ही हक्कल अब्दी, इसलिए क्योंकि इसके अंदर बंदे का हक है, व सकरान फी ही का साही, और नशा और मदहोश आदमी भी बंदे के हक के सिलसिले में का साही वो तंदुरुस्त आदमी की तरह ही है, उकूबतन अलैही उस पर बतौर सजा के, यानी बतौर सजा के बंदे के हुकूक के सिलसिले में उसके साथ होश वाले आदमी का मामला किया जाएगा। तो हद कजफ लगाई है, बेशक नशे में था लेकिन होश वाले आदमी वाला मामला किया जाएगा और इस पर हद कजफ जारी की जाएगी। तो कहते हैं वह सकरान फी ही का साही उकूबतन अलैही, और मदहोश भी जो है बंदे के हक के सिलसिले में होश वाले आदमी की तरह है, उकूबतन अलैही उस पर बतौर सजा के, कमाफी साइर तसरुफाती ही, जैसे कि मदहोश जो है अपने बाकी तसरुफात में है, यानी वो बीवी को तलाक देगा मदहोश तो भी वाकई हो जाएगी बतौर सजा के कि तुमने नशा क्यों किया, और गुलाम को आजाद करेगा तो वो भी आजाद हो जाएगा बतौर सजा के कि तुमने नशा क्यों किया। वलविरत दसकरान उला तबी नुमिन हुमरातुहु, भाई सूरत है मसला ये कि एक आदमी नशे में है और नशे के अंदर वो कुफरिया कलिमात कहता है तो क्या वो मुर्तद हो गया? तो कहते हैं नहीं, मुर्तद होने का ताल्लुक एतकाद से है और एतकाद के लिए अकल चाहिए, बगैर अकल के एतकाद नहीं हो सकता, लिहाजा मदहोश आदमी के मुर्तद होने का कोई एतबार नहीं, और जब वो मुर्तद नहीं हुआ तो उसका और उसकी बीवी के दरमियान जो निकाह है वो भी नहीं टूटा भाई। बात समझ में आ गई? कहते हैं वलवीरत दस सकरान, और अगर सकरान मुर्तद हो गया यानी उसने कलिमा कुफर कहा, ला तबीन मिन हुमर अतुहु, तो उसकी बीवी उससे जुदा नहीं होती यानी उसका निकाह नहीं टूटता, ले अन नल कुफरा मिम्बाबिल एतकादी, इसलिए क्योंकि कुफर जो है वो एतकाद के बाब से है, फलायत हक कुमा सुक्री, लिहाजा एतकाद नहीं पाया जा सकता नशे के साथ, एतकाद के लिए तो अकल का होना जरूरी है, तो लिहाजा जब नशा है मालूम है उस वक्त कोई एतकाद नहीं, तो लिहाजा उस इर्तेदाद का भी कोई एतबार नहीं है भाई। तो कहते हैं फला यतहक्कु मा सुकरी, तो एतकाद जो है वो नशे के साथ नहीं पाया जा सकता, वहां दा कौल अबी हनीफा व मुहम्मदिन रहिमहुमल्लाह, और ये कौल है तरफैन रहिमहुमल्लाह का, ये तरफैन रहमहुमल्लाह का कौल है कि मदहोश का इर्तेदाद मोतबर नहीं है। तो कहते हैं वहादा कौलु अबी हनीफा व मुहम्मदिन रहमहुमल्लाह, और ये तरफैन रहमहुमल्लाह का कौल है, वफी जाहिरी रिवायती, और जाहिर रिवायत में है, तकून रिद्दतन, के मदहोश का इर्तेदाद जो है ये भी इर्तेदाद है, ये भी इर्तेदाद है, ये जाहिर रिवायत में है भाई। तो कहते हैं वफी जाहिर रिवायती तकून रिद्दतन, और जाहिर रिवायत में है कि मदहोश का इर्तेदाद भी इर्तेदाद है। और याद रखो उलमा लिखते हैं कि ये जो आखिरी एक दो जुमले आए, वहादा कौलु अबी हनीफा व मुहम्मदिन रहमहुल्लाहु ताला वफी जाहिर रिवायती तकून रिद्दतन, ये जो एक दो जुमले की इबारत आई, ये हिदाया के आम नुस्खों में नहीं है भाई, یہ ہدایہ کے اکثر نسخوں میں یہ عبارت نہیں ہے بھائی، چند ایک نسخوں میں یہ عبارت موجود ہے. اور یاد رکھو علماء فقہا فرماتے ہیں کہ مدہوش کے ارتداد کا کوئی اعتبار نہیں ہے. مدہوش آدمی، نشے والا آدمی، اگر وہ کلمات کفر بھی کہہ دے اس کی وجہ سے وہ کافر نہیں ہوتا بھائی. آگے دیکھیے بھائی، باب حد القذف وَإِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ رَجُلًا مُحْسَنًا أَوْ امْرَأَةً مُحْسَنَةً بِصَرِيحِ الزِّنَا وَطَالَبَ الْمَقْذُوفُ بِالْحَدِّ حَدَّهُ الْحَاكِمُ 80 صَوْتًا إِنْ كَانَ حُرًّا. اب بھائی باب حد القذف آ گیا. یاد رکھو قذف جو ہے، قذف کا عربی زبان میں معنی ہے پھینکنا، کوئی بھی چیز پھینکنا، چاہے کسی پر کوئی الزام لگایا جائے، چاہے کسی پتھر وغیرہ چیز کو پھینکا جائے، تو قذف کا معنی ہے پھینکنا بھائی. اور اصطلاح شریعت میں قذف اسے کہتے ہیں کہ کسی محسن پر زنا کا الزام لگایا جائے. محسن پاک دامن مرد یا عورت پر زنا کا الزام لگایا جائے، اس کو قذف کہتے ہیں. تو کہتے ہیں باب حد القذف، یہ باب ہے حد قذف کے بیان میں. وَإِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ رَجُلًا مُحْسَنًا أَوْ امْرَأَةً مُحْسَنَةً، اور جب ایک شخص نے ایک محسن آدمی یا ایک محسنہ عورت پر زنا کی تہمت لگائی، بِصَرِيحِ الزِّنَا، صریح زنا کے ساتھ تہمت لگائی، صریح زنا کے ساتھ. تو یاد رکھو ایک ہے صریح الفاظ زنا کے کہ فلاں نے زنا کیا ہے، اور بعض اوقات اور لفظوں کے ساتھ بھی حد قذف ثابت ہو جائے گی. مثلا ایک آدمی دوسرے سے کہتا ہے تو اپنے باپ کا نہیں ہے، تو اپنے باپ کا نہیں ہے. تو اس میں دیکھو صریح زنا کا لفظ تو ذکر نہیں ہے، لیکن حقیقت میں یہ بھی زنا ہی کا الزام ہے اس کی ماں پر، یہ بھی زنا کا الزام ہے اس کی ماں پر بھائی. تو صریح زنا سے مراد ہے جس میں زنا کا لفظ باقاعدہ ذکر کرے بھائی. یہ اسی طرح خاوند اپنی اولاد کی نفی کرے کہ یہ میری اولاد نہیں، تو یہ بھی دراصل زنا ہی کا الزام ہے بھائی. تو کہتے ہیں وَإِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ رَجُلًا مُحْسَنًا أَوْ امْرَأَةً مُحْسَنَةً بِصَرِيحِ الزِّنَا، اور جب کوئی شخص جو ہے صاف الفاظ کے اندر زنا کا الزام لگائے کسی پاک دامن مرد پر یا کسی پاک دامن عورت پر، وَطَالَبَ الْمَقْذُوفُ بِالْحَدِّ، اور وہ شخص جس کو تہمت لگائی گئی ہے اس نے حد کا مطالبہ کیا. بھئی یہ تہمت لگانے والا یہ ہے قاذف، اس میں فاعل قاذف، اور جس کو تہمت لگائی ہے وہ مرد یا عورت، وہ ہے مقذوف بھئی. تو کہتے ہیں وَطَالَبَ الْمَقْذُوفُ بِالْحَدِّ، اور وہ شخص جس کو تہمت لگائی گئی اس نے حد کا مطالبہ کیا، تو حَدَّهُ الْحَاكِمُ 80 صَوْتًا، تو حاکم اس کو حد لگائے گا 80 کوڑے، ان کان حُرًّا، اگر وہ آزاد ہے، اور اگر غلام ہے تو نصف یعنی 40 کوڑے بھائی. کہتے ہیں لقولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں والذین یرمون المحصناتی، اور وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر زنا کا الزام لگاتے ہیں. بھائی قرآن کے اندر یہاں آیا یرمون، اور رمیون کا معنی ہے پھینکنا، لیکن آپ کو صاحب ہدایہ بتلائیں گے کہ یہاں پر اس سے مراد جو ہے بالاتفاق، علماء کا اتفاق ہے، اس رمی سے مراد زنا کا الزام ہے بھائی. اور نیز خود قرآن کے اندر بھی اس پر دلیل موجود ہے. آگے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ثم لم یأتوا بأربعة شہداء، پھر وہ چار گواہوں کو لے کر نہ آئیں، اور چار گواہ تو زنا کے معاملے میں ہوتے ہیں. معلوم ہوا یہاں جو رمی کا ذکر آیا قرآن میں اس سے مراد زنا کا الزام ہے بھائی. تو قرآن میں اللہ فرماتے ہیں والذین یرمون المحصنات، اور وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر زنا کا الزام لگائیں، ثم لم یأتوا بأربعة شہداء، پھر وہ چار گواہوں کو نہ لے کر آئیں، فجلدوہم 80 جلدا، تو پھر ان کو 80 کوڑے لگاؤ، ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا، اور کبھی بھی ان کی گواہی قبول نہ کرو. تو یہ گواہی کا قبول نہ کرنا یہ بھی باقاعدہ حد کا حصہ ہے بھائی. تو کہتے ہیں لقوله تعالی، اللہ تعالی کے اس قول کی وجہ سے والذین یرمون المحصنات الى ان قال، یہاں تک کہ آگے اللہ فرماتے ہیں فجلدوهم 80 جلدا، کہ ان کو 80 کوڑے لگاؤ، الایہ ای الایتا ای اقرا الایتا، تو آپ اس پر نصب بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ مفعول بھی ہی ہے، یا الایت معلومۃ، اس پر آپ رفع بھی پڑھ سکتے ہیں، مبتدا بنا لیں. वल मुरादुर रमी बिज़िना बिल इजमाई, और इस रमी से मुराद जो है रमी बिज़िना है बिल इजमा, इस फेंकने से मुराद जिना का इल्जाम लगाना है बिल इजमा। वफी नस इशारतुन इलैही, और नस यानी आयत के अंदर भी इसकी तरफ इशारा है। वह वश्तेरातु अरबातिम मिन शुहदाई, और वो चार गवाहों की शर्त है। इज हुआ मुख्तसुम बिस जिना, इसलिए क्योंकि चार गवाहों की शर्त ये तो खास है जिना के साथ। वयुश्तरतु मुतालबतुल मखजूफी, भाई मतन में आया था वतालबल मखजूफु बिल हद्दी, के जिस पर तोहमत लगी है वो मुतालबा करे तो फिर हद लगाई जाएगी। साहिब हिदायत आपको बतला रहे हैं कि मकजूफ का मुतालबा जरूरी है, उसका मुतालबा और उसका दावा जरूरी है। तो कहते हैं वयुश्तरतु मुतालबतुल मकजूफी, और मकजूफ का मुतालबा शर्त है। लिअन्नफीही हक्कहू, इसलिए क्योंकि इस हद कजफ के अंदर उसका हक है। मिन हैसु दफ़इल आरी, आर कहते हैं हर वो चीज जो बाइस शर्म हो, जो बाइस ऐब हो, जो बाइस ताना हो, उसको क्या कहते हैं आर। भाई हर वो चीज जो बाइस शर्म हो, बाइस ताना हो, बाइस ऐब हो, उसको क्या कहते हैं अरबी में आर कहते हैं। कहते हैं लि अन्न फीही हक्कहू, इसलिए क्योंकि हद कजफ के अंदर मकजूफ का हक है। मिन हैसु दफ़इल आरी, आर दूर करने के एतबार से। भाई एक आदमी को किसी ने जानी कहा है तो अब ये उसके लिए आर की बात होगी अगर वह हद कजफ का मुतालबा ना करे। कल उसको और लोग भी कहेंगे तो वह हद का मुतालबा कर सकता है। तो कहते हैं लिअन्न फीही हक्कहू, इसलिए क्योंकि हद कजफ के अंदर इस मकजूफ का हक है। मिन हैसु दफ़इल आरी, आर को दूर करने के एतबार से। व इहसानुल मकजूफ लिमा तलौना, भाई मतन में कैद आई थी व इदा कदफर रजुलु रजुलम मोहसनन अविमरातम मोहसनतन, कि मोहसन मर्द या औरत पर किसने तोहमत लगाई तो ये मोहसन होना क्यों जरूरी है मकजूफ का। कहते हैं उसका पता आयत से ही चल रहा है, आयत में आया था वल्लदीन यरमूनल मोहसनाती, तो देखो मोहसनात की कैद मौजूद है आयत में। मालूम है मोहसन मर्द या औरत पर जिना का इल्जाम लगाओ तो फिर ही हद कजफ आएगी, वैसे नहीं भाई। तो कहते हैं वह एहसान उल मकजूफी, और मकजूफ का मोहसन होना लिमा तलव ना, ये उस आयत की वजह से है जो हमने तिलावत की। काला साहिब कुदूरी फरमाते हैं वह युफर रकु अला आजाही, और ये जो 80 कोड़े हैं ये तकसीम किए जाएंगे उस काजिफ के आजा पर, यानी एक ही जगह पर नहीं लगाएंगे। लिमा मर्रा फी हद जिना, उस वजह से जो हद जिना में बात गुजर गई कि अगर एक ही जगह कोड़े लगाएंगे तो उसका तो वो उज्व ही तलफ हो जाएगा, शल हो जाएगा। वला युजर रदुमिन सिया भी, और नीज इसको कपड़ों से नंगा भी नहीं किया जाएगा। जिसको हद कजफ लगाई जा रही है उसकी कमीज नहीं उतारी जाएगी। वजह यह है कि इस हद का जो सबब है यानी जो जिना का इल्जाम है वो कतई नहीं है। इसने जो जिना का इल्जाम लगाया है वो कतई नहीं है। क्या माना कतई नहीं है? मतलब भाई इसको कोड़े क्यों लगा रहे हैं? कि इसने जिना का इल्जाम लगाया है तो इसमें हो सकता है सच्चा हो, हो सकता है उस दूसरे शख्स ने जिना किया है लेकिन इसके पास गवाह मौजूद नहीं, तो लिहाजा ये जो इस कोड़े लगाने का सबब है यानी जिना का इल्जाम ये कतई और यकीनी नहीं है। हो सकता है ये इल्जाम ना हो, ये तो हकीकत हो भाई। तो कहते हैं वला युजर रदु मिन सिया भी, और इसको नंगा नहीं किया जाएगा अपने कपड़ों से। लिअन्न सबबहु गैरु मक्तूइन भी, इसलिए क्योंकि हद कजफ का जो सबब है वो कतई और यकीनी नहीं है। हो सकता है ये सच्चा हो। फला युकामु अला शिद्दति, लिहाजा यह हद कायम नहीं की जाएगी सख्ती पर, यानी सख्त जरबे नहीं लगाएंगे। क्या माना सख्त जरबे? यानी कमीज नहीं उतारेंगे। जब कमीज नहीं उतारी तो जरब इतनी सख्त न रही भाई। तो कहते हैं फला युकामु अला शिद्दति, तो यह हद कजफ सख्ती पर कायम नहीं की जाएगी। बिखिलाफ हद जिना, बखिलाफ हद जिना के वहां पर तो बाकायदा चार गवाहों के जरिए उसका फिल जिना साबित हो चुका है, वो कतई है यकीनी है भाई। गैर अन्नहु युन्ज़ाउ अन्हुल फ़र्वु वल हश्व, मैंने आपको बतलाया था फ़र्वुन ये पोस्तीन को कहते हैं, ये जो जानवर की जो खाल होती है इसको दबागत देकर जैकेट या कोट वगैरह बना लिया जाता है, तो उर्दू में इसको कहते हैं पोस्तीन भाई और अरबी में इसको कहते हैं फ़र्वुन भाई। और हशवन मैंने आपको बतलाया था ये वैसे रुई को कहते हैं, रुई जैसी चीज जिसको दूसरी चीजों के अंदर भरा जाए, लेकिन मुराद वो कोट या वो कपड़ा है जिसके अंदर रुई को भरा गया है। तो लिहाजा ये जो काजिफ है जिसको हद कजफ लगाई जा रही है, इससे मोटे कपड़े उतार लेंगे, कोई पोस्तीन है या मोटा कोट या जैकेट स्वेटर वगैरह मोटी चीज पहनी हुई है वो उतार लेंगे, अलबत्ता कमीज नहीं उतारेंगे, क्योंकि अगर ये मोटा कपड़ा उसके बदन पर हुआ फिर तो उसे जर्ब की तकलीफ ही महसूस नहीं होगी। भाई तो कहते हैं गैर अन्नहु युन्ज़ाउ अन्हुल फर्व वल हश्व, इलावा यह कि इसे उतार लिया जाएगा पोस्तीन और मोटे कपड़ों को, लिअन्न ज़ालिका यमनउ ईसाल अल अलम बिही, इसलिए क्योंकि यह रोकेगा कि उसको तकलीफ पहुंचे, व इन कान अल काज़िफ़ अब्दन, और अगर तोहमत लगाने वाला गुलाम है तो जुलिदा अरबईन सौता, तो उसको 80 कोड़े लगाए जाएंगे, लिमकान अर-रिक लिमकान रिक्की अली वजूद रिक्की, गुलामी के पाए जाने की वजह से। मैंने आपको बतलाया था कि मकान मस्तर है बमाने वजूद के, और साहिब हिदाया ये जगह जगह इस्तेमाल फरमाते हैं। तो कहते हैं गुलाम को 40 कोड़े लगाए जाएंगे लिमकान रिक्की, गुलामी पाए जाने की वजह से। वल एहसान अन यकून अल मकजूफ हुर्रन आकिलन बालिगन मुस्लिमन अफीफन अन फिअल ज़िना, अब एहसान उल कज़्फ बयान कर रहे हैं। मोहसन भाई, मोहसन किसे कहेंगे कि उसके अंदर क्या क्या सिफात हों, तो आपको बतलाएंगे कि एहसान उल कज़्फ यह है कि उस मर्द या औरत में जिस पर जिना का इल्जाम लगाया गया है उसमें 5 सिफात पाई जाए। नंबर 1, वो आजाद हो। नंबर 2, आकिल हो, बालिग हो, मुसलमान हो, और जिना से पाक दामन हो। तो 5 शर्तें हैं एहसानुल कज़फ के लिए। कौन कौन सी? आजाद, आकिल, बालिग, मुसलमान और जिना से पाक दामन। जबकि एहसानुल रजम के अंदर 7 शर्तें थी भाई, आजाद, आकिल, बालिग, मुसलमान, निकाह सही किया हो, फिर बीवी से सोहबत भी की हो, और मियां बीवी दोनों सिफत एहसान पर हो भाई। तो कहते हैं वल एहसान अन यकून अल मकजूफ, और मोहसन होना यह है कि मकजूफ जो है वो हुर्रन, वो आजाद हो, आकिलन वो अकल वाला हो, बालिगन बालिग हो, मुस्लिमन मुसलमान हो, आफीफन अन फिअल ज़िना, और फिअल ज़िना से पाक दामन हो। ये 5 शर्तें हैं एहसानुल कज़फ के लिए। कहते हैं अमल हुर्रियतु, तो आजादी जो है भाई, अब ये शर्तें क्यों लगाई हैं एहसानुल कज़फ के अंदर ये 5 शर्तें, तो अब वो जिक्र करने लगे हैं। कहते हैं अमल हुर्रियतु, तो आजादी जो है, फली अन्नहु युतलकु अलैहि इस्मुल एहसानी, इसलिए क्योंकि आजादी पर एहसान का लफ्ज बोला जाता है, आजाद को भी मोहसन कहते हैं, तो इसके अंदर आजादी जरूरी है भाई। कहते हैं अमल हुर्रियतु, तो आजादी जो है, फली अन्नहु युतलकु अलैहि इस्मुल एहसानी, इसलिए क्योंकि आजादी पर एहसान का इसम बोला जाता है। قال الله تعالى, अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب, अल्लाह सजा का जिक्र फरमा रहे हैं, तो फरमाते हैं فعليهن, इन बांदियों के ऊपर, نصف ما على المحصنات, نصف है वो जो आजाद औरतों पर है, من العذاب यानी सजा, इन बांदियों पर आधी सजा है उसके मुकाबले में जो आजाद औरतों पर है। तो यहां देखो मोहसनात से कौन मुराद हैं? आजाद औरतें। मालूम हुआ मोहसन का माना आजाद के हैं, आजादी को भी एहसान कहते हैं। तो कहते हैं कुरान में अल्लाह फरमाते हैं فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب أي الحرائر, यानी आजाद, ये साहिब हिदाया मोहसनात का माना कर रहे हैं, अल हराइर यानी आजाद औरतें, वल अक्ल वल बुलूग, और अकल और बुलूग की शर्त क्यों लगाई मोहसन होने में, अब वो बयान कर रहे हैं। कहते हैं वल अक्ल वल बुलूग, और आकिल होना और बालिग होना, लिअन्न अल आर ला यलहक बिस्सबी वल मजनूनी, इसलिए क्योंकि आर जो है वो बच्चे और मजनून को लाहिक नहीं होता, आर जो है वो बच्चे और मजनून को लाहिक नहीं हो सकता। क्यों? ले आदम इतहकु की फेले जिना मिन हुमा, इसलिए क्योंकि इन दोनों से फेले जिना नहीं हो सकता। आपको साहिब हिदाया ने बतलाया था कि फेले जिना वो है जिससे शरीयत ने रोका है और जिसको करने वाला गुनाहगार होता है, और बच्चा और मजनून तो मुकल्लफ ही नहीं है, तो वहां जब मुकल्लफ नहीं है तो शरीयत ने इनको रोका भी नहीं और इसके फेल के करने से ये गुनाहगार भी नहीं होंगे। तो मालूम हुआ बच्चे और मजनून का जो फेल है वो जिना नहीं। जब वो जिना कर ही नहीं सकते तो इनको जानी कह भी दिया जाए, ये इनके लिए कोई शर्म और आर की बात नहीं, क्योंकि ये फेल तो ये कर ही नहीं सकते भाई। तो कहते हैं बाकी आकल और बालिग होने की शर्त जो है लिअन्नल आर ला यलहकु बिस्सबी वल मजनूनी, इसलिए क्योंकि आर जो है वो बच्चे और मजनून को लाहिक नहीं होता। लिअदमी तहक्कुकी फ़िअल ज़िना मिन्हुमा, इसलिए क्योंकि इन दोनों से जिना का फेल साबित नहीं हो सकता। वल इस्लाम, और इस्लाम की भी शर्त लगाई कि मुसलमान होना चाहिए मोहसन को। कहते हैं लिकौलिही अलैहि सलातु वस्सलाम, उसकी वजह हुजूर अलैहि सलाम का कौल है कि आपने फरमाया मन अशरका बिल्लाहि फलैस बिमुहसनिन, जिसने अल्लाह के साथ शरीक बनाया तो वो मोहसन नहीं है। जिसने अल्लाह के साथ शिरक किया वो मोहसन नहीं है। मालूम है मोहसन क्या मुसलमान होना जरूरी है। और नीज पांचवीं शर्त यह थी कि वो मोहसन जिना से पाकदामन हो। अब उसकी वजह जिक्र कर रहे हैं, कहते हैं वल इफ्फतु, और पाकदामन होना लिअन्न गैर अल अफीफ ला यलहकुहुल आरु वकदल कादिफु सादिकुन फीही। कहते हैं इसलिए क्योंकि जो जिना से पाकदामन नहीं है, जिसने जिना किया है तो उसको तो अगर जानी कह भी दिया जाए उसके लिए कोई आर की बात नहीं है। और नीस अगर पाकदामन नहीं है और उसको कोई जानी कह दे तो उस पर हद इसलिए भी नहीं जारी की जाएगी क्योंकि वो जानी कहने वाला वो तो सच बोल रहा है, वो तो कोई इल्जाम तो नहीं लगा रहा भाई। तो कहते हैं वलाई फतु, और पाकदामन होना लिअन्न गैर अल अफीफ ला यलहकुहुल आरु, इसलिए क्योंकि जो जिना से पाकदामन नहीं है उसको जानी कहने से कोई आर भी लाहिक नहीं होता। वकदल कादिफु सादिकुन फीही, और इसी तरह ये इल्जाम लगाने वाला इस इल्जाम में सच्चा है, यानी वाकई ये जानी है। आगे देखिए वमन नफा नसब गैर ही वकाल लस्त लि अबी का फइन नहु युहद्दु, भाई एक आदमी ने दूसरे से नसब की नफी की और कहा तू अपने बाप का नहीं है, तो इस सूरत में हद जारी की जाएगी। मालूम हुआ ये इसकी मां पर जिना का इल्जाम लगा रहा है भाई, क्योंकि नसब की नफी कर रहा है, नसब की नफी कर रहा है, मालूम हुआ जिना का इल्जाम लगा रहा है। कहते हैं वमन नफा नसब गैर ही, और जिसने किसी दूसरे के नसब की नफी की वकाला और कहा लस्त अली अबी का तू अपने बाप का नहीं है फइन नहु युहद्दु, तो इसको हद लगाई जाएगी। तो इसको हद लगाई जाएगी, मालूम हुआ वो आदमी इसकी मां पर जिना की तोहमत लगा रहा है, लेकिन उसी वक्त हद लगाई जाएगी अगर इस आदमी की मां मोहसना हो, यानी आजाद भी है और मुसलमान भी है। कहते हैं वहादा इदा कानत उम्मुहु हुर्रतम मुस्लिमतन, और यह हद उस वक्त आएगी जिस वक्त उसकी मां आजाद और मुसलमान हो। लिअन्नहु फिल हकीकति कस्फुन लिउम्मिही, इसलिए क्योंकि ये जो नसब की नफी की है यह हकीकत में उसकी मां पर तोहमत है, जिना का इल्जाम है, तो उसका मोहसना होना जरूरी है भाई। लिअन्न नसब इन्नमा युन्फा अनिज़ानी ला अन गैरिही, इसलिए क्योंकि नसब की नफी जिना करने वाले से की जाती है ना कि किसी दूसरे से। नसब की नफी किससे की जाती है? जिना करने वाले से। यानी यूं कहो बाज शारहीन फरमाते हैं कि यहां पर दरअसल सिर्फ मां पर जिना का इल्जाम नहीं है, मां और बाप दोनों पर जिना का इल्जाम है, क्योंकि नसब की नफी कर रहा है, तू अपने बाप का नहीं है, तो नसब की नफी की, और नसब की नफी किससे की जाती है? जानी से। मालूम हुआ तेरे बाप ने तेरी मां से जिना किया था, तू जिना की वजह से पैदा हुआ है। बात समझ में आ गई। तो नसब की नफी तो जिना करने वाले से होती है, तो बाद शारहीन ने लिखा यह दरअसल दोनों पर इल्जाम है, मां और बाप पर भी, लेकिन चूंकि एक ही लफ्ज है लिहाजा एक ही हद आएगी भाई। तो कहते हैं लिअन्न नसब इन्नमा युन्फा अनिज़ानी ला अन गैरिही, इसलिए क्योंकि नसब की जो नफी की जाती है वो जिना करने वाले से की जाती है, ला अन गैरिही, ना कि किसी और से। बाप से नसब की नफी की है, मालूम हुआ बाप को जानी करार दे रहा है। वमन काला लिगैरिही फी गज़बिन, और जिस शख्स ने किसी दूसरे को गुस्से में कहा लस्त इब्न फुलानिन, तू फुलां का बेटा नहीं है, और लिअबी हिल्लज़ी युदअ लहू, उस बाप को जिसकी साथ उसको पुकारा जाता है, भाई मसलन जैद का बेटा है, दूसरा आदमी उसको कहता है तू जैद का बेटा नहीं है, तो देखो उस बाप को जिक्र किया जिसकी तरफ इस बच्चे की निस्बत की जाती है कि ये उसका बेटा है। बेटा किसका है? जैद का। और इसने भी क्या कहा? तू जैद का बेटा नहीं है। तो आगे चलकर आपको बतलाएंगे कि अगर ये गुस्से में कहा है मालूम है जिना का इल्जाम लगा रहा है, गाली दे रहा है, और अगर गुस्सा नहीं है वैसे उसको कहता है तू जैद का बेटा नहीं है, तो फिर याद रखो इस सूरत में यह जिना का इल्जाम नहीं है, बल्कि यह उसको मलामत कर रहा है कि तुझ में अपने बाप वाली सिफात नहीं है। तो कहते हैं वमन काल अली गैर ही फी गजबिन, और जिस शख्स ने किसी दूसरे को गुस्से में कहा लस्त बिबनी फुलान, कि तू फुलां का बेटा नहीं है, ली अभी हिल्लदी युद आलहू, यानी उसका वो बाप जिसके साथ उस बच्चे को पुकारा जाता है, यू हद दू, तो इस आदमी पर हद लगाई जाएगी, वलव कालफी गैर गजबिन ला यू हद दू, और अगर ये बात उसने गैर गजब में कही है यानी गुस्से के अलावा कही है तो फिर हद नहीं लगाई जाएगी, ली अन्नाइन दल गजबी यूराद उबी ही हकीकत हू, इसलिए क्योंकि गजब की हालत में इस कलाम के हकीकी माना का इरादा किया जाता है, सब बन लहू उस आदमी को गाली देते हुए, वफी गैर ही यूराद बिहिल मुआतबतु, और गजब के अलावा के अंदर इसके जरिए इरादा किया जाता है अल मुआतबतु, मलामत करने का, कि उसको मलामत कर रहा है, भी नफी मुशाबहती ही अबाहू, उसके बाप से उसके मुशाबहत की नफी करते हुए, फी असबाबिल मुरूअती, मुरव्वत के असबाब में उसको मलामत कर रहा है, बाप से मुशाबहत की नफी करते हुए, मुरव्वत के असबाब में, यानी जैसे तेरे बाप के अंदर मुरव्वत है यानी आला सिफात मौजूद हैं, तेरे अंदर उस जैसी सिफात नहीं है भाई। तो मुरुअत कहते हैं, याद रखो, कमाल रुजूलियत को, कामिल मर्द होना, यह है मुरुअत भाई। तो कामिल मर्द की जो सिफात हैं वो मुराद हैं, यानी अच्छे अखलाक मुराद हैं भाई। तो कहते हैं वफी गैर ही यूराद बिहिल मुआतबतु, और गजब के अलावा इस लफ्ज के जरिए इरादा किया जाता है मलामत करने का, भी नफी मुशाबहत ही अबाहू, उसके बाप से उसके मुशाबहत की नफी करते हुए, फी असबाबिल मुरूअती, मुरव्वत के असबाब में, यानी मुरव्वत के असबाब में उसके मुशाबहत की नफी की जा रही है बाप से। आगे देखिए, वलव काला, और अगर किसी शख्स ने दूसरे से कहा लस्त बिब्नी फुलानिन, कि तू फुलां का बेटा नहीं है, दादा का जिक्र करता है, भाई तू अपने दादा का बेटा नहीं है, कहते हैं इस सूरत में भी हद नहीं आएगी, क्योंकि वो हकीकत बयान कर रहा है, वो तो दादा का बेटा नहीं है, अपने बाप का बेटा है भाई। तो कहते हैं वलव काला लस्त बिब्नी फुलानिन, और किसी शख्स ने दूसरे से कहा कि तू फुलां का बेटा नहीं है, यानी जद्दहू, यानी उसका दादा जो है, लम यू हद्दा, तो इस आदमी को भी हद नहीं लगाई जाएगी, लिअन्नहु सादिकुन फी कलामिही, इसलिए क्योंकि यह आदमी अपने कलाम में सच्चा है, वलव नसबहू इला जद्दिही ला युहद्दु ऐज़न, एक आदमी ने दूसरे से कहा ए ज़ैद के बेटे, हालांकि ज़ैद तो उसका दादा है, तो अब तो हद आनी चाहिए, कहते नहीं फिर भी हद नहीं आएगी, दादा की तरफ भी निस्बत कर दी जाती है मजाजन भाई। तो कहते हैं वलाउ नसबहू इला जद्दिही, और अगर किसी ने उस आदमी की निस्बत कर दी उसके दादा की तरफ, ला युहद्दु ऐज़न, तो उसको भी हद नहीं लगाई जाएगी, लिअन्नहु कद युनसबु इलैही मजाजन, इसलिए क्योंकि दादा की तरफ भी कभी कभार निस्बत कर दी जाती है मजाजन, जैसे कुरान में भी अल्लाह फरमाते हैं या बनी आदम, ए आदम के बेटो, अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम तो हमारे दादा गुजरे हैं भाई, तो उनकी तरफ निस्बत कर दी जाती है भाई। तो कहते हैं वलव काला लहू, और अगर किसी शख्स ने दूसरे से कहा या बना जानियती, ए जानिया के बेटे, और हाल यह है कि उसकी मां मर चुकी है और वो मोहसना थी, मां मर चुकी है और मोहसना थी, तो फिर याद रखो इस सूरत के अंदर बेटा हद का मुतालबा कर सकता है भाई। मैंने आपको बतलाया था हद कजफ के अंदर वरासत जारी नहीं होती, लिहाजा जिस शख्स पर जिना का इल्जाम लगाया है वो खुद तो हद का मुतालबा कर सकता है, लेकिन वो मर जाए तो फिर उसकी औलाद हद का मुतालबा नहीं कर सकती। तो जिंदगी के अंदर जब किसी शख्स पर जिना का इल्जाम लगाया जाए तो सिर्फ वो ही मुतालबा कर सकता है, उसकी औलाद मुतालबा नहीं कर सकती, जिंदगी में भी नहीं कर सकती और मरने के बाद भी नहीं कर सकती। जिस शख्स पर जिना का इल्जाम लगा है वो ही मुतालबा करेगा, लेकिन अगर मरने के बाद जो है किसी ने किसी के मां या बाप पर जिना का इल्जाम लगाया, फिर तो वो शख्स जिंदा ही नहीं है, और अगर वो शख्स या औरत जिस पर जिना का इल्जाम लगाया वो मोहसन थे तो फिर उनकी औलाद या इसी तरह उनके उसूल और फुरू, यानी जो ऊपर की तरफ है दादा पर दादा वगैरह, और नीचे की तरफ जो है पोता पोती वगैरह और नवासा नवासी वगैरह, ये सब, तो ये जो उसूल और फुरू हैं जिनमें पैदाइश वाला रिश्ता है, ये सब हद का मुतालबा कर सकते हैं। एक शख्स का इंतकाल हो चुका है, वह मोहसन है, किसी ने उस पर जिना का इल्जाम लगा दिया, तो यह जो मरने वाला है इसके ऊपर की तरफ बाप दादा वगैरह जो उसूल हैं, और इसी तरह नीचे की तरफ जो औलाद हैं, बेटा पोता वगैरह या बेटी नवासी वगैरह, ये सब क्या कर सकते हैं? हद का मुतालबा कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि उसने उस शख्स पर जिना का इल्जाम लगाया है जो मर चुका है और मोहसन है, तो अब उसके उसूल और फुरू मुतालबा कर सकते हैं। तो कहते हैं वलाउ काल अलहू, और अगर एक शख्स ने दूसरे से कहा यबना जानियती, ए जानिया के बेटे, वह उम्मुहु मैततुन मुहसनतुन, इस हाल में कि उसकी मां मर चुकी है और मुहसना है, फतालब इब्नु बिहद्दिही, तो बेटे ने उसकी हद का मुतालबा किया, हुद अल काज़िफु, तो इल्जाम लगाने वाले को हद लगाई जाएगी, लिअन्नहु क़दफ़ मुहसनतम बादा मौतिहा, इसलिए क्योंकि इसने मुहसना पर तोहमत लगाई है उसकी मौत के बाद, वला युतालिबु बिहद्द अल क़ज़फी। अच्छा भाई, मैयत पर अगर कजफ लगाया जाए, मैयत पर जिना का इल्जाम लगाया जाए, तो कौन कौन हद का मुतालबा कर सकता है? तो साहिबे हिदाया आपको बतलाएंगे कि जो उसूल और फुरू हैं वो मुतालबा कर सकते हैं, क्योंकि इसकी वजह से नसब में ऐब आएगा। क्या आएगा? नसब में ऐब आएगा, और नसब के अंदर ऐब आना ये उसूल के लिए भी ऐब की बात है और फुरू के लिए भी ऐब की बात है, इसलिए ये सब मुतालबा कर सकते हैं। तो कहते हैं वला युतालिबु बिहद्दिल क़ज़्फ़ लिलमय्यति, और मय्यत की हद कजफ का मुतालबा नहीं कर सकता, इल्ला मय्यक़अल क़द्ह फी नसबिही, मगर वो के तान आता हो उसके नसब में। भाई एक था क़दहुन, दाल पर फतहा, चंद सत्रें कबल गुजरा, क़दहुन प्याले को कहते हैं, और अगर दाल साकिन हो क़दहुन तो यह ताने को कहते हैं, तो मैयत के लिए कोई हद कजफ का मुतालबा नहीं कर सकता, इल्ला मैयकाउल कदहु फी नसबिही बिकज़फिही, मगर वो शख्स कि जिसके नसब में ताना आता हो उसके तोहमत लगाने की वजह से। मैयकाउल कदहु फी नसबिही बिकज़फिही, उसकी तोहमत की वजह से उसके नसब में ताना आता हो वो मुतालबा कर सकता है। वह वल वालिदु वल वलदु, और वो वालिद है, वल वलद और औलाद है। वालिद से सिर्फ वालिद नहीं मुराद, ऊपर की तरफ सारे उसूल मुराद हैं जी। और वलद से सिर्फ औलाद नहीं मुराद, बल्कि नीचे तक औलाद और औलाद की औलाद सब मुराद हैं। और मैंने आपको बताया था वलद का लफ्ज़ मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों पर बोला जाता है, तो बेटा या बेटी, पोता या पोती, नवासा या नवासी, ये सारे मुतालबा कर सकते हैं। इसी तरह सारे उसूल जो हैं, दादा नाना वगैरह, ये सब मुतालबा कर सकते हैं भाई। तो कहते हैं वह वल वालिदु वल वलदु, और वो वालिद और वलद है, लिअन्न अल आर यल्तहिकु बिही, इसलिए क्योंकि आर इनको लाहिक होता है, इनको भी आर लाहिक होता है, इनके लिए भी ये ताने और शर्म की बात है, लि मकानिल जुज़ियति अय लि वुजूदिल जुज़ियति, यहां भी मकान किस माना में? वजूद के माना में, लि मकानिल जुज़ियति अय लि वुजूदिल जुज़ियति, जुज़ियत पाए जाने की वजह से कि ये सब क्या है? एक दूसरे का जुज है, इनके दरमियान पैदाइश वाला रिश्ता है भाई। फयकूनुल क़ज़्फ़ मुतनाविलन लहू मानन, तो ये कजफ जो है ये इसको भी शामिल है माना के एतबार से। भाई देखिए, एक आदमी मर चुका है, वो मोहसन था, उस पर किसने जिना का इल्जाम लगाया, तो इसके उसूल और फुरू जो हैं वो सब हद कजफ का मुतालबा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए भी ये आर की बात है जी। उनके लिए भी ये आर की बात है, तो गोया माना के एतबार से उनको भी तोहमत लगाई है इसने। तोहमत लगाने वाले ने तो सिर्फ मैयत को तोहमत लगाई है जी। लेकिन बाकियों के लिए भी ये आर का बाइस है जी। तो बाकियों के लिए सूरत के एतबार से तो बाकियों पर इसने तोहमत नहीं लगाई, लेकिन माना के एतबार से इसने सब पर तोहमत लगाई है, क्योंकि ये सब के लिए बाइस आर है भाई। तो ये माना है फयकूनुल क़ज़्फ़ मुतनाविलन लहू मानन, तो ये क़ज़्फ़ जो है उन उसूल और फुरू को भी शामिल है माना के एतबार से। वाइंदा शाफी रहमहुल्ला, और इमाम शाफी रहमहुल्ला के नजदीक, यसबुतु हक़ुल मुतालबति लिकुल्ली वारिसिन, के मुतालबे का हक साबित है हर वारिस के लिए। इमाम शाफी रहमहुल्ला के नजदीक हर वारिस जो है उसको मुतालबे का हक है। याद रखो, इमाम शाफी रहमहुल्ला के नजदीक यह हद कजफ के अंदर वरासत जारी होती है, लिहाजा एक आदमी पर किसने जिना का इल्जाम लगाया, उसका इंतकाल हो गया, हमारे नजदीक हद कजफ साकित हो गई, लेकिन इमाम शाफी रहमतुल्लाह के नजदीक उसकी औलाद हद कजफ का मुतालबा कर सकती है, क्योंकि हद कजफ के अंदर भी वरासत जारी होती है इमाम शाफी रहमतुल्लाह के नजदीक। भाई तो कहते हैं वह इंद शाफी रहमहुल्ला और इमाम शाफी रहमहुल्ला के नजदीक यसबुतु हक़ुल मुतालबति लिकुल्ली वारिसिन के मुतालबे का हक साबित है हर वारिस के लिए, लिअन्न हद्दल क़ज़्फ़ यूरसु इंदहू अला मा नुबय्यिनु, इसलिए क्योंकि हद कजफ जो है इसमें वरासत जारी होती है उनके नजदीक, अला मा नुबय्यिनु उस वजह से जो हम बयान करेंगे, वइंदना और हमारे नजदीक विलायतुल मुतालबति लैस बितरीकिल इरसी के मुतालबे की जो विलायत है वो वरासत के तरीके पर नहीं है, बल लिमा जकर ना हो बल्कि उस तरीके पर है जो हमने जिक्र कर दिया कि एक आदमी पर जिना का इल्जाम लगाया है तो ये बाकी उसूल और फुरो जो है उनके लिए भी ताने का बाइस है, यानी माना के एतबार से उन पर भी ये तोहमत है, तो वो हद कजफ का मुतालबा कर सकते हैं। वलिहादा यसबुतु इंदना और इसीलिए हमारे नजदीक हद कजफ का मुतालबा साबित होता है, लिल महरूम अनिल मीरासी वो शख्स जो मीरास से महरूम हो, बिल कत्ल कत्ल की वजह से, आपने पढ़ा है वारिस अपने मूरिस को कत्ल कर दे तो वो फिर उसको मीरास नहीं मिलती, उसको मीरास, तो इस किस्म का बेटा जिसने अपने बाप को कत्ल किया था अब ये बाप का वारिस तो नहीं बन सका, लेकिन अगर बाप पर कोई जिना का इल्जाम लगाए और वो जो मकतूल बाप था वो मोहसन था तो ये बेटा उसके हद कजफ का मुतालबा कर सकता है। ये माना है वलिहादा यसबुतु इंदना लिल महरूम अनिल मीरास बिल कत्ल और इसीलिए हमारे नजदीक ये मुतालबे का हक साबित होता है उस शख्स के लिए भी जो मीरा से महरूम है कत्ल की वजह से, वयसबुतु लिवलदिल बिनती और इसी तरह ये मुतालबे का हक साबित होता है लिवलदिल बिनती बेटी की औलाद के लिए भी, यानी नवासे नवासियां वगैरह, कमा यसबुतु लिवलदिल इब्नी जैसे कि बेटे की औलाद के लिए बिल इतफाक यह मुतालबा इस मुतालबे का हक साबित है, वो मुतालबा कर सकते हैं, खिलाफ अली मुहम्मदिन रहिमहुल्लाह बखिलाफ इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि यहां नसब को देखा जाएगा और जो बेटी की औलाद होती है उसकी निस्बत तो इस आदमी की तरफ नहीं होती बल्कि उनके दादा की तरफ निस्बत की जाती है, ये तो बच्चों का नाना है, ये तो बच्चों का नाना है, बेटी की औलाद है ना, तो नसब तो दादा की तरफ से चलता है नाना की तरफ से नहीं चलता, इसलिए नाना की हद कजफ का मुतालबा बेटी की औलाद नहीं कर सकती इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के नजदीक। लेकिन हम कहते हैं नहीं, बेटी की औलाद के साथ भी पैदाइश वाला रिश्ता है और नसब वाला रिश्ता है और नसब दोनों तरफ से चलता है, अगरचे निस्बत मर्द की तरफ की जाती है लेकिन चलता दोनों तरफ से है, चुनांचे इसीलिए जब किसी के मां का खानदान भी बड़ा हो और बाप का खानदान भी बड़ा हो तो कहते हैं कि यह शख्स जो है करीम उत्तरफैन है, दोनों तरफ से मुआज़्ज़ज़ खानदानों से ताल्लुक रखता है, मां की तरफ से भी और बाप की तरफ से भी। तो कहते हैं खिलाफ अली मोहम्मदीन रहमतुल्लाह बखिलाफ इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के, वयसबुतु लिवलदिल वलदि हाल क़ियामिल वलदि खिलाफ अली ज़ुफ़रा रहमतुल्लाह, हमारे नजदीक भाई एक आदमी है वो मर चुका है उस पर किसने जिना का इल्जाम लगाया, उसका बेटा भी जिंदा है और पोता या नवासे वगैरह भी जिंदा हैं, तो पोते और नवासे भी मुतालबा कर सकते हैं हद कज़फ का, जबकि इमाम ज़ुफ़र रहमतुल्लाह फरमाते हैं नहीं, जब बेटा या बेटी खुद मौजूद हैं, औलाद खुद मौजूद है तो औलाद की औलाद मुतालबे का हक नहीं रखती। भाई हम कहते हैं नहीं, जैसे औलाद के लिए यह बात आर की बाइस थी इसी तरह यह जिना का इल्जाम औलाद की औलाद के लिए भी आर का बाइस है, तो वह भी मुतालबा कर सकते हैं। तो यह माना है वयसबुतु लिवलदिल वलदी हाल क़ियामिल वलदी और औलाद की औलाद के लिए भी यह मुतालबे का हक साबित है, हाल क़ियामिल वलदी औलाद की मौजूदगी की हालत में, औलाद की मौजूदगी की हालत में भी औलाद की औलाद के लिए यह मुतालबे का हक साबित है, खिलाफन लिज़ुफ़र रहमहुल्ला बखिलाफ इमाम ज़ुफ़र रहमहुल्ला के। बात समझ में आ गई भाई, चलिए बस भाई, हादा हुवल मराम, अल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।